Good evening, everybody. On behalf of the whole Samapan family in Germany, we wholeheartedly welcome you to this lovely May retreat. And we are truly, truly happy that Pujya Swamiji, Pujya Guru Ma, and Shashwati Ji came all the way from India to join us here for the May retreat. Thank you so much. And the motto of Samapan meditation is, the whole world is a family. And more than 380 people are together here today for this weekend. From 15 different countries, people have participated. So I've written down the list. So first of all, just in alphabetical order, we have participants here from Austria. Could you raise your hand? Welcome from Austria. And we have people from Canada. Welcome. And one participant is from the Czech Republic. Woo. Could you raise your hand that we know where you're sitting? Oh, maybe somewhere in the back. Okay. Then from France, could you raise your hands, please? Welcome. And from Germany, could you raise your hands here? And from Ireland, welcome. From Italy, from the Netherlands, welcome. One lady from Peru. One gentleman from Poland. One gentleman from South Africa. Then we have a lovely group from Switzerland. And from the Arabic countries, please raise your hands. Don't be shy. And from the USA. Aya. And one meditator came from Singapore. Is there any country we have missed? Which country? Oh my goodness! Okay, we welcome wholeheartedly the family from United Kingdom, our sisters. Woo! So today's program will start with Swamiji's program. And we had sent out emails to you before for the preparation, how we can prepare for the retreat. So most of you may have read it. So basically, for these 3 days, we can just forget about all our problems on the worldly levels, any things which bother us, and just use the energy in the best possible way. We can use the energy which Swamiji transfers just to go inwards and for our spiritual progress. Because this is what Swamiji did. This is how Swamiji used the energy he received from his gurus. And often, we use the energy to solve our problems. But in this way, we don't really solve the root cause of the problems. So it's much, much better to use this energy really for spiritual progress, to go inwards. So these 3 days, we can just forget about everything, problems and so on, and just be here as souls and be as one family together. So in this way, we can also ignore the faults or weaknesses of other person. We can just forget about other if they are not perfect or how they are. We can judge or forget about judging, which is our nature, which is normal, and just stay inwards. And of course, we can exchange each other about our spiritual experiences and the meditation and just maybe we can be like children. Actually, this retreat center is mainly for children, and so we can go back to our childhood and enjoy these 3 days like children and like pure souls. Thank you very much. Let us start with the Guru Avahan. Gurur Brahma,
Gurur Vishnu, Gurur Mahesha, Gurur Sahasra, Brahma, Tasmai Shri Gurudeva, Tasmai Shri.
Guruji Kripya Amritvani Barsaye, Guruji Kripya Amritvani Barsaye, Guruji Kripya Amritvani Barsaye. I asked Swamiji to shower us with his words. My salutations to all the pious souls gathered here.
आज जर्मनी में होने वाले इस रिट्रीट में की शुरुआत आज एक कलकत्ते की पुरानी घटना से करने जा रहे हैं।
I am going to start this retreat in Germany with an old story that happened in Calcutta.
कलकत्ते की घटना समर्पण ध्यान संस्कार को परिभाषित करती है।
The story from Calcutta will be an example of समर्पण meditation.
कलकत्ते की एक सड़क के ऊपर चार घोड़ों की गाड़ी ले जाना मना था।
It was forbidden to take a four-horse-drawn carriage through one road of Calcutta.
वो ले जाने का सम्मान केवल वायसराय को प्राप्त था।
The respect of taking a four-horse carriage was only allowed to the viceroy.
लेकिन एक गांव का खेडूत उस रोड से चार घोड़ों की गाड़ी की लेके गया।
However, a rural farmer took his four-horse carriage over that road.
तो पुलिस ने उसको पकड़ा उसके बाद में उसकी गाड़ी भी जब्त कर ली उसको भी जेल में डाल दिया।
The police caught him, arrested him and confiscated his carriage.
उसके बाद में उसने एक अपने जवान वकील मित्र को फोन किया।
He called a young lawyer friend of his.
वो मित्र आया उसने घोड़ा गाड़ी देखी उसको देखा और उसको आश्वासन दिया कल सुबह मैं कोर्ट में तुझे छुड़ा दूंगा।
His friend arrived, examined the carriage and talked to him and assured him that he would get him freed the next morning in court.
दूसरे दिन कोर्ट में उस पर आरोप पत्र पढ़ा गया कि यहाँ से चार घोड़ों की गाड़ी ले आना मना है इसने नियम को तोड़ा है इसलिए दंड का पात्र है।
The next day in court, the charges against him were read out that he took a four-horse carriage over the road where it was forbidden for anyone other than the viceroy to do that.
लेकिन इस खेडूत के वकील ने कहा मेरे मुवक्किल ने आपका नियम तोड़ा ही नहीं।
The lawyer said that his client had not broken the rule at all.
आप कृपया मुझे घोड़ा गाड़ी कोर्ट में पेश करने की अनुमति दीजिए।
प्लीज परमिट मी टू प्रेजेंट द कैरेज इन कोर्ट।
तो घोड़ा गाड़ी कोर्ट में पेश की गई।
द कैरेज वाज प्रेजेंटेड इन कोर्ट।
और वकील ने जज को रिक्वेस्ट की कि आप थोड़ा नीचे आकर के देखिए ये चार घोड़े नहीं दो घोड़े और दो घोड़ियां हैं तो नियम कहां तोड़ा है।
द लॉयर आस्क्ड द जज टू कम डाउन एंड चेक फॉर हिमसेल्फ इट वाज टू हॉर्सेस एंड टू फीमेल हॉर्सेस सो हिज क्लाइंट हैड नॉट ब्रोकन द रूल।
तो जज ने नीचे आकर देखा सचमुच दो घोड़े और दो घोड़ियां थी तो उसने उस खेडूत को छोड़ दिया।
द जज केम डाउन एंड चेक्ड एंड इट वाज इन फैक्ट टू मेल हॉर्सेस एंड टू फीमेल हॉर्सेस सो ही लेट द मैन गो।
और एक नया नियम बनाया इस रोड से घोड़ा गाड़ी घोड़ा और घोड़ियों की गाड़ी ले आना मना है।
एंड ही मेड अ न्यू रूल दैट फ्रॉम दैट रोड इट वाज फॉरबिडन टू टेक अ कैरिज विद हॉर्स मेल हॉर्सेस और फीमेल हॉर्सेस फॉर।
ये घटना बताने का उद्देश्य एक ही है कि मनुष्य ही नियम बनाता है।
The goal of this story is to tell you that man makes the rules.
नियम मनुष्य ही तोड़ता है.
Man also breaks the rules.
और उसमें से रास्ता भी मनुष्य ही निकलता है.
And man also finds a way out of this.
तो मनुष्य ने बनाया हुआ कानून कभी भी मनुष्य को सुधार नहीं सकता है.
So a rule made by man can never improve man.
इसे हम देखते हैं ना, दुनिया में दुनिया भर के कानून बनते रहते और समाप्त होते रहते.
That's why we see that the whole world makes a lot of rules and they also break these rules.
क्या कारण है? कारण एक ही है, क्योंकि दिन पे दिन बुद्धि का विकास हो रहा है.
Why is that? This is because the intellect is evolving every day.
बाप से बेटा बुद्धिमान है, बेटे से उसका बेटा बुद्धिमान है.
The son is smarter than the father. His son is smarter than him.
तो 25 साल के बाद में नई पीढ़ी आ जाती है और नई पीढ़ी आने के बाद में वो पुराने कानून में से कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देती है.
Within 25 years, a new generation arrives and they will find a way out of the old rules.
इसलिए आप कितने भी कानून बना लो, कितने भी पुलिस रख लो, जब तक आत्म नियंत्रण नहीं होगा तब तक इसमें से रास्ते निकलते ही रहेंगे.
You can make all the rules that you like. Until you have control over the soul, there is no way out of this problem.
अब मैं दुनिया भर में घूमते रहता हूँ.
I travel around the entire world.
और दुनिया के अलग अलग राष्ट्र प्रमुखों से मिलता हूँ.
And meet the leaders of several countries.
मैं उनको बोलता हूँ, तुम्हारी इच्छा रहती है ना कि तुम्हारे यहाँ पे जाति के, भाषा के, रंग के कोई विवाद न हो, दंगे न हो, शांति रहो.
I tell them, you want that in your country there are no problems of caste, of language, of skin color.
लेकिन तुम्हारे पास में कोई इसका रास्ता है क्या? कोई रास्ता नहीं.
But do you have a way out of this? No, you don't.
लेकिन हमारे पास रास्ता है. रास्ता ये कि ध्यान, ध्यान करेंगे तो आदमी को उसका आत्मभाव जागृत होगा तो सारे शरीर भाव छूट जाएंगे.
We have a way out of this. The answer is meditation. If everyone meditates, he will associate with the soul and he will get rid of his body awareness.
आत्मभाव योग से जागृत हो सकता है.
And this association with the soul can be awakened through yoga.
योग का क्षेत्र इतना विशाल है, इतना बड़ा है.
The domain of yoga is extremely large.
यानी योग के माध्यम से विश्व की सारी समस्याएं हल हो सकती हैं.
Through the medium of yoga, all of the problems of the world can be solved.
पहली बात तो ध्यान करने से, योग करने से आपके आसपास एक हवा मंडल निर्माण होता है, आपके आसपास एक ओरा निर्माण होता है.
Firstly, by meditating, you will create an environment around you, an aura around you.
निर्माण होने के बाद आपको अंदर से और बाहर से सुरक्षा प्राप्त होती है.
Once the aura is developed, you will have protection from outside and from within.
अंदर से सुरक्षा से मेरा आशय, आप कभी भी आत्महत्या नहीं करते.
By protection from within, I mean that you will never commit suicide.
आपको कभी भी नकारात्मक विचार नहीं आते.
You will never have negative thoughts.
आज आप देखो ना, कितने युवा पीढ़ी आत्महत्याएं कर रही है.
Today you will see that a lot of youth are committing suicide.
तो ध्यान करेंगे, meditations करेंगे, तो आत्महत्याएं रुक सकती है.
So if they meditate, these suicides can be stopped.
दूसरा, बाहरी सुरक्षा प्राप्त होती है.
Additionally, you also get protection from outside.
बाहरी सुरक्षा से मेरा आशय, आपकी कभी भी दुर्घटना नहीं हो सकती.
By external protection, I mean that you will not meet with an accident.
आपकी कभी हत्या नहीं हो सकती.
No one will be able to kill you.
एक बार मैं रामकृष्ण मिशन के डॉक्टरों का शिविर ले रहा था.
Once I was conducting a workshop for doctors of the Ramakrishna Mission.
तो शिविर के पश्चात डॉक्टरों ने पूछा, स्वामी जी आप अलग अलग देशों में जाते हो, अलग अलग जगह का खाना खाते हो, अलग जगह का पानी पीते हो, आपका डायरिया नहीं होता क्या?
After the workshop, the doctors asked, Swami ji, you travel to different places, you eat different kinds of food, drink different kinds of water, do you never suffer from diarrhea?
मैंने उनको उत्तर दिया, आप डायरिया तो बहुत पास की बात कर रहे हो, मैं जिस कार से आता हूँ उसका कभी एक्सीडेंट भी नहीं होता.
I answered, diarrhea is far away. I can say that the car that I travel in will never meet with an accident.
तो उन्होंने अपने मठाधीश को पूछा कि स्वामी जी इतने आत्मविश्वास से ये कैसी बात कह सकते हैं?
They asked their leader, how can Swami ji be so sure about something like this?
तो रामकृष्ण मिशन के मठाधीश ने कहा, जो भी व्यक्ति ध्यान करता है, meditations करता है, उसके आसपास एक आभामंडल बन जाता है, उसके आसपास एक aura बन जाता है.
Their leader replied that anyone who meditates develops an aura around them.
उस ओरा में कभी भी दुर्घटना नहीं हो सकती, कभी भी उसकी हत्या नहीं हो सकती.
No accident can happen in that aura. No one can kill you in that aura.
यही सुरक्षा कवच मिलिट्री को, पुलिस को मिले, इसलिए हम इस वर्ष रक्षा कवच मना रहे हैं.
In order to provide this protection to the police and to the military, we are celebrating this year as the year of the protectors.
भारत में जगह जगह पुलिस के लिए, रक्षकों के लिए मेडिटेशन के शिविर आयोजित किए जा रहे हैं.
In India, A lot of workshops are being organized for the police, for the military.
दूसरा सब जगह मेरा जाना संभव नहीं है इसलिए वीडियो शिविर होते हैं.
It is not possible for me to go everywhere. That's why we organize video shibirs, video workshops.
और वो मिलिट्री वाले पुलिस वाले अपने अनुभव बताते ना स्वामी जी बम फूटता है लेकिन पास में फूटता है और हम उस स्थान से हट जाते हैं उस समय.
And they narrate their experiences. Swamiji, a bomb will explode, but it goes off next to us. We are able to move away from it.
गोलियां चलती है लेकिन जिस समय गोली चलती है पता नहीं क्यों उस समय हम चाय पीने के लिए ग्लास उठाने नीचे झुकते हैं कान के पास से गोली निकल जाती.
Bullets are fired, but when the bullet is fired, we probably bend down to pick up a cup of tea and the bullet flies by our ears.
यानी घटनाएं घटती नहीं ऐसी घटती है लेकिन वो बच जाते हैं.
So accidents do happen, but they don't affect us.
ये कैसे संभव है?
How is this possible?
जब आत्मा के नियंत्रण में आपका शरीर आ जाता है तो आने वाली दुर्घटना का आत्मा को पता चल जाता है वो आपके शरीर को सुरक्षित कर लेती है.
When the body is under control of the atma, of the soul knows what is going to happen and provides protection to the body.
Actually, yog, 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 कुछ नहीं है. Yog यानि क्या? शरीर का आत्मा के साथ योग करना.
What is yog? Yog is the connection of the body and the soul.
हम सब के भीतर आत्मा है, लेकिन हमको उसका पता ही नहीं.
There is a soul within all of us, but we are not aware of it.
लेकिन वो आत्मा को अगर हम जागरूक करते हैं हमारा समर्पण शरीर का समर्पण अगर आत्मा के प्रति करते हैं तो आत्मा के नियंत्रण में हमारा पूरा जीवन चला जाता है.
If the body surrenders to the soul, if we recognize the soul within us, then the soul protects the body.
दूसरा ये आत्म साक्षात्कार से संभव है.
This is possible through self-realization.
देखिए हमको ना ये मालूम है कि शरीर को जन्म देने वाली एक माँ है.
We know that there is one mother who gives birth to our body.
यानी एक ही स्त्री होगी जिसके द्वारा हमारा जन्म हुआ है.
There can be only one woman through whom we are born.
बिल्कुल ठीक है सही. एक ही गुरु होगा जिसके द्वारा हमारे आत्मा का जन्म होगा.
In the same way, there can be only one guru, one master through whom our soul can be born.
और दूसरा दुनिया के सब रिलेशन से सब रिश्तों से यह रिश्ता एकदम अलग है.
And secondly, this relationship is different from every other relationship in the world.
देखिए सभी रिश्ते देह से संबंधित है जैसे माँ और बेटे का रिश्ता.
All relationships are at the physical level, for example that of a mother and son.
पति पत्नी का रिश्ता.
That of a husband and wife.
भाई बहन का रिश्ता.
That of a brother and sister.
भाई भाई का रिश्ता.
That of a brother and brother.
सब का संबंध शरीर के साथ है.
These are all relationships of the body.
लेकिन गुरु और शिष्य का रिश्ता आत्मा से संबंधित है.
But that of a guru and his student is a relationship of the soul.
इस रिश्ते को अगर समझोगे ना तो आगे की बात समझ में आएगी.
If you understand this relationship, then you can understand what comes next.
मैं आपको एक घटना बताता हूँ.
Let me tell you an incident.
एक बार मेरे गुरु ने एक आज्ञा चक्र के गुरु के पास मुझे भेजा.
Once my guru sent me to a guru who for my forehead chakra.
वो बहुत बड़ा एक पानी का झरना था. वो झरने के पीछे एक गुफा थी.
And there was a huge waterfall. Behind the waterfall, there was a cave.
और झरने के पास से एक छोटी सी पगडंडी जाती थी. उससे उस गुफा में जाया जाता था.
And there was a small path behind the fountain through which you could access the cave.
तो खूब जोर से झरना बह रहा था. झरने के पास से धीरे-धीरे मैं उस गुफा के मुंह तक गया.
The waterfall was quite heavy. Very, very carefully, I walked the path and approached the cave.
वो गुफा के भीतर वो गुरु रहते थे.
The guru lived inside of this cave.
और दूसरा जैसे गुफा के दरवाजे पे मैं खड़ा रहा और अंदर आने का प्रयास किया अंदर से उन्होंने खूब जोर से चिल्लाया अंदर आए तो सर फोड़ के रख दूंगा.
As soon as I tried to approach the cave, he shouted from within, "If you come inside, I will break your head."
मैं दुविधा में था. एक गुरु ने कहा अंदर जाओ एक गुरु कह रहा अंदर मत आओ तो क्या करूं.
I was in a dilemma. One guru asked me to go inside. The other guru asked me not to go inside. What should I do?
जिस गुरु ने मुझे भेजा था, उनके ऊपर विश्वास रख के मैं अंदर चला गया.
The guru who had sent me, I had full faith in him, and so I went inside.
और जैसे ही अंदर गया, उन्होंने पैर के खड़ाऊ मेरे सर में दे मारी.
As soon as I went inside, he threw his slipper at my head.
और मेरे सर में से खून निकलने लग गया.
My head started bleeding.
अब आप एक व्यवहारिक दृष्टि से देखो, आप बोलोगे कितने हिंसक गुरु थे कि आपका सर फोड़ दिया.
If you look at this from a behavioral viewpoint, you will think the guru is so violent.
लेकिन क्या घटना घटी वो मेरे को मालूम है ना.
But what exactly happened, I know.
घटना ये घटी एक जोर से शॉक से मेरे अंदर का मैं समाप्त हो गया.
Because of the shock, the I within me ended.
जैसे ही मेरे अंदर का मैं समाप्त हो गया, मैं उनके आत्मा के साथ मेरी आत्मा विलीन हो गई.
As soon as the I within me died, my soul merged with his soul.
तो उनके भीतर का ज्ञान मेरे भीतर ट्रांसफर हो गया.
And all of the knowledge within him was transferred to me.
मैं आपको और दो उदाहरणों से ये घटना समझाने की कोशिश करता हूँ.
Let me explain this to you with two other examples.
आपके बीच में कोई साइंस के विद्यार्थी होंगे तो आपने देखा होगा साइंस की लैब में एक यूट्यूब रहती है.
There must be science students among you. You must have seen that in a scientific laboratory there is a U-formed tube.
YouTube में 100 ml पानी इधर डालो तो 50 ml पानी इधर चला जाए.
If you put 100 ml water in one side of the YouTube, 50 ml goes to the other side.
ये ट्यूब इधर डालती नहीं है, ये ट्यूब इधर से खींचती नहीं, ऑटोमेटिक होता है.
This side doesn't send the water to the other doesn't pull the water through. It just happens automatically.
आत्मा साक्षात्कार की घटना भी सेम यही है.
Self-realization is also a similar process.
गुरु करता नहीं है, आप करवाते नहीं है, ऑटोमेटिक हो जाती है.
The guru doesn't do it, you don't do it, it just happens automatically.
दूसरी घटना आपको बताता हूँ. जैसे समझ लो एक नदी है, बह रही बह रही बह रही.
Another example, imagine that there is a river, it's flowing and flowing and flowing.
और बहते बहते वो एक जगह जाके समुद्र को मिल जाती है.
And as it flows, it meets the ocean at some point.
वहां जाके उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वहां जाके वो समुद्र कहलाती है.
Once it gets there, it loses its own identity, it becomes called the ocean.
बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से जब शिष्य की आत्मा गुरु के आत्मा से समरस हो जाती है तो गुरु का ज्ञान शिष्य में ट्रांसफर हो जाता है.
In the same way, when the soul of the student merges with that of the guru, the knowledge of the guru comes into the student.
देखिए एक बार 90 जैन मुनियों का शिविर मैं अहमदाबाद में ले रहा था.
Once in Ahmedabad, I took a workshop for 90 Jain monks.
उसके अंदर विभिन्न गच्छ के विभिन्न प्रकार के जैन मुनि एकत्र हुए थे.
There were Jain monks from several different sects in that collection.
तो उनके जो प्रमुख थे उन्होंने मुझे एक चिट्ठी लिखी, स्वामी जी आप जैन धर्म के मूल ग्रंथ पढ़े हो और उसकी संस्कृत की भाषा में लिखे हो आपने पढ़े, आप संस्कृत के महान विद्वान हो तो उसकी बातें आपने आपके पुस्तक हिमालय का समर्पण योग में लिखी है.
One of the leaders of these monks wrote to me and said, Swamiji, you have read the original Jain Sanskrit scriptures and you have written about these scriptures in your book Himalaya ka Samarpan Yog.
मैंने वो चिट्ठी अपने जेब में रख ली. बाद में शिविर के बाद उनको मिलने को गया.
I put the letter in my pocket and after the workshop I went to meet him.
उनको पहले बताया, पहली बात तो मैं संस्कृत का विद्वान नहीं हूँ, मुझे संस्कृत आती नहीं.
I told him, first of all, I'm not a Sanskrit scholar. I don't know Sanskrit.
दूसरा मैं जैन नहीं हूँ, इसलिए जैन धर्म का मुझे कोई ज्ञान नहीं.
Secondly, I'm not Jain and therefore I don't know anything about Jainism.
लेकिन जैन साधुओं के साथ मैं कुछ दिन तक हिमालय में साथ में रहा, उनको समर्पित रहा, तो उनके आत्मा का ज्ञान मेरे आत्मा में ट्रांसफर हो गया.
However, I spent some time with Jain monks in the Himalayas and I was completely surrendered to these monks and therefore their knowledge was transferred to me.
और जब उनकी इच्छा हुई तब समाज में आने के 8 साल के बाद में वो ज्ञान मैंने पुस्तक में लिखा.
And when it was their wish, 8 years after returning to society, I put down this knowledge in my book.
वो ज्ञान उन्होंने मुझे दिया नहीं, मैंने उनसे लिया नहीं.
I did not take this knowledge from them, they did not give it to me.
Automatic transfer हुआ.
It has been transferred automatically.
क्या होता है मानो, हमको ना वही ज्ञान मालूम है जो कोई किसी को सिखा सकता है, कोई किसी से सीख सकता है.
We only know of that knowledge that someone can teach or someone can learn from someone.
लेकिन आत्मज्ञान ऐसा है कोई किसी को सिखा भी नहीं सकता, कोई किसी से सीख भी नहीं सकता.
But the knowledge of the soul is such that it cannot be taught and it cannot be learned.
एक आत्मा से एक आत्मा में वो ट्रांसफर होता है.
It can be transferred from one soul to another.
मैं आपको और एक एग्जांपल से समझाने का कोशिश करता हूँ.
I'll give you one more example.
मान लो यहाँ पे एक मोमबत्ती जल रही है.
Imagine that there is a candle lit here.
उसके अंदर एक बुझी हुई मोमबत्ती है.
And there is an unlit candle next to it.
ये बुझी हुई मोमबत्ती की भी इच्छा हुई कि अपने को भी जलने का है, और जलने की इच्छा से वो धीरे 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 पास में आई और पास में आके इस जलती हुई मोमबत्ती के लोह से उसकी स्पर्श हो गई तो ये भी उजल उठी.
The unlit candle had a wish that it also wants to be lit, so it gradually started moving towards the lit candle. As it came close to the lit candle, it automatically lit itself.
तो जलती हुई मोमबत्ती ने बुझी हुई मोमबत्ती को जलाया क्या? नहीं, वो तो अपनी जगह जल रही थी.
So did the lit candle light the unlit candle? No, it was just burning in its own place.
बुझी हुई मोमबत्ती जलने की इच्छा से पास में आई और जल उठी.
The unlit candle approached it with the wish to be lit and therefore it was lit.
ये घटना भी ठीक इसी प्रकार की.
This is also such a story.
गुरु कुछ नहीं करता, वो अपने स्थान पे अपने जगह स्थित होता है। हम उसके पास उस इच्छा से जाते हैं और इच्छा करते हैं कि हमको आत्म साक्षात्कार मिले, तो हमको मिलता है।
द गुरु डज नॉट डू एनीथिंग, ही इज इन हिज ओन प्लेस, वी गो टू हिम विद द विश ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एंड दैट्स व्हाई वी गेट इट।
आत्म साक्षात्कार के बाद में साधना करके प्रैक्टिस करके हमको ही हमारी प्रगति करना पड़ती है।
वी हैव टू प्रोग्रेस आवरसेल्फ थ्रू प्रैक्टिस थ्रू मेडिटेशन।
आत्म साक्षात्कार से अधिक बाहर से पाने के लिए कुछ भी नहीं है।
देयर इज नथिंग ग्रेटर देन सेल्फ रियलाइजेशन टू बी अटेन्ड फ्रॉम द आउटसाइड,
क्योंकि उसके बाद में जो कुछ है वो हमको हमारा ही पाना पड़ता है।
बिकॉज एवरीथिंग आफ्टर दैट वी विल हैव टू गेट फॉर आवरसेल्फ।
मुझे भी मेरे गुरु से जब अनुभूति हुई तब मेरी अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ हुई।
When I had my first experience with my guru, my inward journey started.
और अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ होने के बाद में मेरी परमात्मा की खोज समाप्त हो गई।
And once my inward journey started, my search for God ended.
जो मैं परमात्मा को बाहर खोज रहा था, वो सारी खोज बंद हो गई।
The search for God on the outside ended.
और उसके बाद में वो सारी खोज भीतर की ओर हो गई।
And then the search started on the inside.
और मेरे ही भीतर परमात्मा है, इसका अनुभव हुआ।
And I experienced that God is within me.
अगर सभी विश्व के लोग योग करें, ध्यान करें, तो क्या होगा? वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना साकार हो सकती है।
If everyone in the world meditates, then what will happen? The idea of Vasudeva Kutumb, one world, one family, can be realized.
देखिए, वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना हमारे पूर्वजों ने दी थी।
This idea of one world, one family was given to us by our ancestors.
तो वहां तक पहुंचने का, वो सिद्ध होने का कोई तो मार्ग होगा, कोई तो रास्ता होगा।
So there must be some way of reaching this idea.
वहां तक पहुंचने का मार्ग कोई मूर्ति नहीं हो सकती।
The way to reaching this cannot be a statue.
यानी किसी मूर्ति के माध्यम से वहां तक पहुंचा नहीं जा सकता।
You cannot use the medium of any statue to reach there.
किसी देवता के माध्यम से वहां पहुंचा नहीं जा सकता।
You cannot reach there through the medium of any god.
किसी उपासना पद्धति के माध्यम से वहां पहुंचा नहीं जा सकता।
Not through any method of worship.
क्योंकि कोई सी भी उपासना पद्धति ऐसी नहीं है जिसका विश्व के सारे मनुष्य मानते हो।
Because there is no method of worship that all the people in the whole world can believe.
कोई भी भाषा ऐसी नहीं हो जिसमें विश्व के सारे लोग मानते हो।
There is no single language that everyone in the world can believe.
कोई भी नियम ऐसे नहीं है जिसको विश्व के सारे लोग मानते हो।
There is no single rule that all the people in the world can follow.
तो केवल योग ही एक ऐसा मार्ग है जिस मार्ग से मनुष्य मनुष्य के साथ जुड़ सकता है।
So yoga is the only way through which humans can connect with one another.
मैं पिछले 25 साल से विश्व भर के अनेकों देशों में घूमा हूँ।
For the last 25 years, I have traveled through several different countries of the world.
घूम-घूम के लोगों को अनुभव करा रहा हूँ, अनुभूति करा रहा हूँ।
And through this travel, I help people to experience.
और 25 साल के अनुभव के आधार पर आपको मैं कह सकता हूँ कि मनुष्य को मनुष्य से अगर जोड़ सकता है तो वो मार्ग योग है।
And through all of this experience, I can say with assurance that if there is any way to join humans to one another, it is through yoga.
क्योंकि समर्पण संस्कार के अनुभूति के कारण मनुष्य को मनुष्य के भीतर की मनुष्यता जागृत हो जाती है।
बिकॉज थ्रू द वैल्यूज ऑफ समर्पण मेडिटेशन ह्यूमन वैल्यूज आर अवेकन्ड विद इन ह्यूमंस एंड देन दे कैन कनेक्ट टू ईच अदर।
भीतर का आत्मभाव जागृत हो जाता है।
द सोल फीलिंग विद इन वन इज अवेकन्ड।
और आत्मभाव जागृत होने के बाद में शरीर से बनाए हुए सारी सीमाएं समाप्त हो जाती है।
And once the soul feeling is awakened, all of the differences that come about from the body disappear.
शरीर ने बनाए हुए सारे भेद समाप्त हो जाते।
All the discrimination that were created due to the body disappear.
फिर भाषा का भेद समाप्त हो जाता है।
Discrimination due to language ends.
धर्म का भेद समाप्त हो जाता है।
Discrimination due to language ends.
देश का भेद समाप्त हो जाता है।
Discrimination due to country ends.
रंग का भेद समाप्त हो जाता है।
Discrimination due to skin color ends.
पुरुष और स्त्री का भेद भी समाप्त हो जाता है।
डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू जेंडर आल्सो एंड्स।
आप ध्यान करेंगे तो आप अनुभव करेंगे, आपको कोई अनुभव नहीं रहेगा कि आप पुरुष हो या स्त्री हो।
इफ यू मेडिटेट यू विल रियलाइज दैट यू हैव लॉस्ट द रियलाइजेशन व्हेदर यू आर मेल और फीमेल।
क्योंकि ये सबका संबंध शरीर के साथ है। जब आपका शरीर भाव भी समाप्त हो जाएगा तो आपके अंदर ये सारे भेद समाप्त हो जाएंगे।
Because all of these are associated with the physical body. Once you end the association with the physical body, all of these discriminations will disappear.
अब देखिए, 21 तारीख को, 21 जून को, अभी योगा दिवस मनाया जाने वाला है।
On the 21st of June, World Yoga Day will be celebrated.
योग दिवस पे आप देखेंगे टीवी के ऊपर, न्यूज़पेपर के ऊपर, रेडियो के ऊपर योगासन यानी योग, योगासन यानी योग ऐसा समझाया जा रहा है।
You will see that on TV, radio, and other media, you will get the impression that yoga is yoga exercises.
वास्तव में योगासन योग का केवल एक अंग है, एक पार्ट है.
In reality, yoga exercises are just one part of complete yoga.
योगासन योग नहीं है.
Yoga exercises are not yoga.
योगासन केवल एक भाग है.
Yoga exercises are just one part.
एक बार मैं ऑस्ट्रेलिया में गया था.
Once I had gone to Australia.
ऑस्ट्रेलिया में पांच योगा टीचर मेरे को मिलने के लिए आई.
Five yoga teachers came to visit me.
पांचों योगा टीचर का सुंदर सुडौला शरीर था.
All five yoga teachers had beautiful shapely bodies.
जैसे एकादे फैक्ट्री में से गुड़िया निकाली हो ना, इस प्रकार से.
As if they were all manufactured from a factory.
लेकिन पांचों योगा टीचर का एकदम कमजोर, एकदम वीक चित्त था.
But all of them had extremely weak minds, chitta.
तो मुझे खूब आश्चर्य हुआ, योगा टीचर है और इसका चित्त इतना वीक क्यों है?
I was very surprised. If they are yoga teachers, why are their minds so weak?
बाद में ना वो दिन का शिविर समाप्त हो गया.
The workshop that day ended.
मैं घर गया.
I went home.
तो घर पे मुझे सुबह मेरे नानी की बात याद आई.
And then next morning, I remembered something my grandma used to say.
मेरे नानी के सामने कोई भी जवान लड़की खूब देर तक मिरर देखती थी तो नानी जोर से डांट लगा देती, मिरर मत देख, मिरर मत देख.
If any young girl looked into a mirror for a long time in front of my grandma, she would scold the girl and say, "Don't look in the mirror, don't look in the mirror."
तो मुझे लगता था कि लड़की मिरर देख रही है, नानी का क्या जा रहा है, काय पर डांट रही
है? I used to think, if the girl wants to look in the mirror, why is my grandma so upset? Why is she scolding her?
लेकिन इतने साल के बाद में ऑस्ट्रेलिया में मुझे उस डांटने का अर्थ समझ में आया.
But after all of these years in Australia, I realized why my grandma used to scold them.
वो लड़की मिरर में क्या देखेगी? अपने अंग प्रत्यंगों को देखेगी.
What will the girl see in the mirror? Her body.
सारा अंग प्रत्यंग नाशवान है.
The body is destructible.
तो अगर नाशवान चीजों पे चित्त रखोगे तो चित्त का नाश होगा ही ना.
If you place your chitta on destructible things, your chitta will be destroyed.
फिर वो पांचों योगा टीचर दूसरे दिन कार्यक्रम में आए.
The next day, the five yoga teachers came to the program again.
पांचों योगा टीचर को मैंने कहा, आपका अत्यधिक चित्त आपके फिगर के ऊपर है, इसीलिए आपके चित्त का नाश हुआ है.
I told them that your mind is focused on your physical body and that is why it has been destroyed.
उन्होंने कहा, स्वामी जी, हमारा अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है, हम तो फिगर बनाने को आए थे.
They said that they have no spiritual interest. They had come to yoga to make shapely bodies.
मैंने उनको कहा, फिगर बन गई लेकिन अब चित्त का नाश हुआ, उसका क्या?
I told them, now you have those figures. What about your mind that has been destroyed?
अब एक काम करो, रुक, पागल बोले तो भी चलेगा, एक घंटा आकाश की तरफ देखो.
I told them, do one thing. Even if people think you are crazy, for one hour every day, look at the sky.
तो आपका चित्त स्ट्रांग होगा, चित्त मजबूत होगा.
Then your mind will become strong.
आप लोग भी प्रयोग करके देखो ना, आकाश की तरफ देखते बैठो आधा घंटा, एक घंटा, तो देखो आपको बिल्कुल विचार नहीं आएंगे.
You try this too. Look at the sky for 30 minutes, for an hour, and you will realize that you have no thoughts.
दूसरा आप सोचो, वो योगा टीचर ने केवल अपने फिगर के ऊपर खूब ज्यादा ध्यान दिया, खूब ज्यादा चित्त डाला, उसके चित्त का नाश हुआ.
Now think about this. The yoga teachers focused on their own body, and yet their chitta was completely destroyed.
तो डॉक्टर दिन भर में कितने पेशेंट के शरीर पे चित्त डालते होंगे?
So doctors put their mind on so many physical bodies in the day.
और फिर इनके चित्त का कितना नाश होता होगा?
So how much their mind must be getting destroyed.
अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज में शिविर करके आ रहा हूँ.
I'm coming from a workshop that I conducted in Ahmedabad at a medical.
अहमदाबाद के एसोसिएशन ने एक रिसर्च किया है, वहाँ कोई डॉक्टर 60 साल तक जिंदा ही नहीं रहता.
The association in Ahmedabad has conducted research. No doctor survives beyond 60 years of age.
यानी कोई भी डॉक्टर सीनियर सिटीजन होता ही नहीं.
No doctor becomes a senior citizen.
54, 55, 56 इसमें चला जाता.
54, 55, 56 and that's it.
अच्छा, जो पेशेंट है वो मस्त 85, 90 बैटिंग कर रहे हैं लेकिन ये डॉक्टर जा रहे हैं.
On the other side, the patients live to 85, 90 and the doctors are dying young.
और पेशेंट भी इशारे करते, दो डॉक्टर पहुंचा दिए, तीन डॉक्टर पहुंचा दिए.
And the patients will tell you, I've outlived two doctors, I've outlived three doctors.
कारण क्या है?
Why is this?
कारण एक ही है कि खूब ज्यादा चित्त पे, शरीरों पे चित्त डाल डाल के इनके चित्त का नाश हुआ है.
The reason is because of excessive focus on the physical body, their chitta is destroyed.
दूसरा, दिन भर ये डॉक्टरों के आसपास पेशेंट का एरिया रहता है.
In addition, throughout the day, these doctors are surrounded by patients.
तो अगर खराब एनर्जी में दिन भर अगर कोई आदमी रहेगा तो उसका इफेक्ट उसके ऊपर तो पड़ेगा ही ना.
So if someone spends the entire day in such negative energy, then he will be affected by this.
इसलिए अभी डॉक्टर को मैंने कहा तुमको ध्यान की अत्यधिक आवश्यकता है.
That's why I told the doctors there is a need for meditation for you.
क्योंकि तुम्हारा पूरा समय उस खराब एरिया में जाता है, पेशेंटों के बीच में जाता है.
Because your entire time is spent in this negative energy around patients.
जिस प्रकार से डॉक्टर को पेशेंटों के बीच में जीना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से पुलिस को अपराधियों के बीच में रहना पड़ता है.
Just like doctors spend their life among patients, the police spend their life among criminals.
तो मैं पुलिस को भी कहता हूँ कि तुम अपने आसपास अच्छा हवामंडल बनाओ, अच्छा ओरा बनाओ, जो अपराधियों के बीच में तुमको प्रोटेक्ट कर सके.
I tell the police as well, develop a good aura around you that can protect you around criminals.
यानी योगासन यानी योग नहीं है.
So yoga exercises are not yoga.
योग का क्षेत्र खूब विशाल है, खूब बड़ा है.
The domain of yoga is very large, very huge.
एक स्थान पे बैठ के दुनिया के किसी भी व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके, इतना बड़ा क्षेत्र योग का है.
Sitting in one spot, one can find out information about anyone in any part of the world. That's how large the domain of yoga is.
एक बार मैं इंग्लैंड गया हुआ था.
Once I was in England.
तो इंग्लैंड में एक क्रिश्चियन पादरी के घर रुका हुआ था.
And I was living with a Christian priest.
तो वहां पे ना टीवी पे एक कार्यक्रम आ रहा था. टीवी के ऊपर एक आदमी अमेरिकन कैमरा लेकर के कैरेलियन फोटोग्राफी का आया. जो अनाउंसर थी ना टीवी की, उसको बोला, वो लड़की को बोला, मैं तेरा फोटो निकालूंगा, उसके बाद में फोटो के आसपास कौन से रंग आए वो देखूंगा, रंग देख करके तू कैसी लड़की बताऊंगा.
There was a TV program where an American came with a camera, Kirlian photography, and he told the host that he would take a picture of her, study the colors on the picture, and then tell her about her.
तो उस कैमरामैन ने वो लड़की का फोटो निकाला, फोटो के आसपास कौन से कलर आए वो देखा, कलर देख करके उसको बताया वो कैसी लड़की है.
He took a picture of her, studied the colors around her on the picture, and then described the girl.
मैंने उस क्रिश्चियन पादरी को कहा, मुझे लड़की भी नहीं चाहिए, मुझे कैमरा भी नहीं चाहिए, मुझे फोटो भी नहीं चाहिए, मुझे रंग भी नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही बता सकता हूँ.
I told the Christian priest, I don't need the girl, I don't need the picture, I don't need the colors, I can just tell you everything about her anyway.
दूसरी बार जब मैं लंदन गया ना, तो लंदन के एक स्टूडियो में मेरा कार्यक्रम रखा गया.
The next time that I went to London, a show was organized for me in a studio in London.
मैं बैठा हुआ था लंदन के स्टूडियो में.
I was sitting in a studio in London.
लेकिन विश्वभर से लोग मुझे केवल इतना ही बोलते थे, स्वामी जी मुझे मार्गदर्शन करो. तो मैं उनकी समस्या जानता था, उनके प्रॉब्लम जानता था, उसका निदान होता.
But people around the world only said, Swami ji, guide us, and then I could tell them what their problems were and also solve them for these people.
वो टीवी का नाम था विनस टीवी. उसका जो अनाउंसर था ना, अनवर राजा, वो बोला, भारत से महान ज्योतिषाचार्य आए हुए हैं, आप आपका नाम भी मत बताओ तो वे आपके बारे में सब कुछ बता देते.
The channel was called Venus TV. The host Anwar Raja said, "We have a great astrologer with us. Even if you don't give us your name, he can still tell you everything about you."
जब मेरे हाथ में माइक आया ना, तब मैंने कहा, मैं ज्योतिषाचार्य नहीं हूँ.
When I got the mic in my hand, I said, "I'm not an astrologer."
जिस प्रकार से अंगूठे की छाप प्रत्येक व्यक्ति के अलग रहती है, ठीक उसी प्रकार से दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति यूनिक है.
Just like the fingerprint is unique for every individual is unique in the world.
प्रत्येक व्यक्ति के विचार यूनिक है, प्रत्येक व्यक्ति का हवामंडल यूनिक है.
The thoughts of every individual are unique, the aura around them is unique.
जो भी व्यक्ति पूछता है कि नहीं, उस व्यक्ति का हवामंडल देखता हूँ, उसके विचार देखता हूँ, उसका अध्ययन करता हूँ, बाद में उसका निदान बता करता
हूँ. Anyone who asks me a question, I study their aura, I study their thoughts, and then I answer their questions for them.
कहने का उद्देश्य एक ही है कि विश्व के अंदर एक स्थान पे बैठ के किसी भी व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, इतना बड़ा क्षेत्र योग का है.
What I mean to say is that you can sit in one spot in the world and find out anything about anyone in any other part of the world. That's how large yoga is.
तो योग को केवल योगासन तक सीमित मत रखो.
So don't keep yoga restricted to only yoga exercises.
केवल योगासन योग नहीं है, इसका प्रचार प्रसार मैं पूरे विश्व भर में कर रहा हूँ.
Yoga exercises alone are not yoga. This is what I'm trying to spread in the whole world.
योगासन सहायक है योग के लिए, लेकिन योगासन योग नहीं है.
योगा एक्सरसाइजेस आर हेल्पफुल फॉर योगा, बट देयर नॉट इन देमसेल्व्स योगा.
कैसे सहायक है वो बताता हूँ.
लेट मी टेल यू हाउ दे आर बेनिफिशियल.
योगासन करने से आपका आपके शरीर पे नियंत्रण हो जाता है.
थ्रू योगा एक्सरसाइजेस यू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर योर ओन बॉडी.
तो जब ध्यान करने के लिए आप बैठे हो नहीं, तो 30 मिनट स्थिर शांति के साथ बैठ सकते हो.
सो व्हेन यू सिट डाउन टू मेडिटेट, यू विल बी एबल टू सिट स्टिल फॉर 30 मिनट्स.
क्या होता है जब हम ध्यान करने को बैठते हैं ना, सबसे बड़ा विरोध हमारे शरीर का ही होता है.
When we sit down to meditate, the biggest opposition comes from our body.
क्योंकि शरीर को स्थिर बैठने की आदत ही नहीं है.
बिकॉज द बॉडी इज नॉट यूज टू सिटिंग स्टिल.
जब हम स्थिर बैठते हैं, शांत बैठते हैं, तब हम विचार करने लग जाते हैं.
When we sit still, we start thinking.
और ध्यान की परिभाषा है, कुछ नहीं करना ध्यान है.
And not doing anything is meditation.
कुछ नहीं करना यानी शरीर से भी कुछ नहीं करने का, माइंड से भी कुछ नहीं करने का, एकदम शांत.
Not doing anything means not doing anything with the body, not thinking any thoughts, doing nothing.
लेकिन ऐसी हमको आदत ही नहीं.
But we are not used to this.
तो जब हम 30 मिनट बैठने की कोशिश करते हैं तो शरीर हमको विरोध करता है.
So when we try to sit for 30 minutes, our body opposes us.
आपको जहाँ खुजली नहीं छूटती वहाँ खुजली छूटेगी.
Where you don't normally feel itchy, you'll start feeling itchy.
उबासी आएगी, खांसी आएगी, गैसेस पास होंगे, नीचे से पास होंगे, ऊपर से पास होंगे.
You'll need to yawn. You might want to pass gas from up, from down.
ये सब आपके शरीर का विरोध है.
This is all an opposition of your body.
तो आपका शरीर कितना भी विरोध करे, 30 मिनट वहां से हिलने का नहीं.
No matter how much your body opposes this, do not move for 30 minutes.
ऐसा संकल्प करके आपको बैठना पड़ेगा.
Make a resolution of this and then sit down to meditate.
और दूसरा, ध्यान लगे न लगे, ये आपका क्षेत्र ही नहीं है.
Whether you reach a meditative state or not, that is not your business.
आपका ध्यान लगे तो भी 30 मिनट बैठो, ध्यान नहीं लगे तो भी 30 मिनट बैठो.
If you reach a meditative state, then also sit for 30 minutes. If you don't, still sit for 30 minutes.
ऐसे बैठते बैठते आपके शरीर को आदत लगेगी स्थिर बैठने की.
And if you continue to do this, your body will get used to sitting still for 30 minutes.
दूसरा, आपको ना ध्यान में फिर खूब विचार भी आएंगे.
Secondly, you will start getting a lot of thoughts during meditation.
जैसे ही ध्यान करने बैठे, इतने विचार आएंगे, इतने विचार आएंगे, इतने विचार आएंगे.
As soon as you sit down to meditate, you will get lots and lots and lots of thoughts.
आपको कितने भी विचार आए, वो विचारों को रोकने का कोशिश मत करो.
No matter how many thoughts you get, do not try to stop them.
क्योंकि हम जो भी कोशिश करेंगे, वो सारी कोशिशें शरीर की होगी.
Because any attempt on our part will be an attempt at the body level.
और ध्यान में शरीर का कोई रोल ही नहीं है.
And there is no role of the body in meditation.
इसलिए विचारों को भी रोकने का कोशिश मत करो. एकदम शांति के साथ अपने विचारों का निरीक्षण करो.
So don't even try to stop those thoughts. Just simply observe them.
आप देखोगे धीरे धीरे विचार कम होना चालू हो जाएंगे.
You will notice that gradually the thoughts will reduce.
अच्छा, उसके बाद में फिर आपकी बुद्धि जागृत होगी.
And then your intellect will wake up.
बुद्धि जागृत होने के बाद में वो आपको ज्ञान देगी. बुद्धि बताएगी ध्यान तुमसे होने वाला नहीं है, तुम 30 मिनट बेकार कर रहे हो.
एंड देन योर इंटेलेक्ट विल ट्राई टू टेल यू यू कैन नॉट मेडिटेट फॉर 30 मिनट्स, यू आर जस्ट वेस्टिंग टाइम.
तो आपकी बुद्धि कितनी भी सलाह दे तो भी 30 मिनट वहां बैठने का, उठने का नहीं वहां से.
नो मैटर हाउ मच योर इंटेलेक्ट ट्राइज टू एडवाइस यू, डू नॉट गेट अप, सिट देयर फॉर 30 मिनट्स.
यानी आपका शरीर कितना विरोध करे, आपको उठने का नहीं.
सो इफ योर बॉडी अपोजेस, डू नॉट गेट अप.
आपको कितना भी मन के विचार आए तो भी उठने का नहीं.
No matter how many thoughts you get, you don't have to get up.
30 minutes, आपकी बुद्धि कितना भी आपको भटकाए, उठने का नहीं.
No matter how much your intellect tries to distract you for 30 minutes, do not get up.
30 minutes, ध्यान करने का मैंने एक मार्ग निकाला है, वही मार्ग आज आपको बताता हूँ.
I found a way to meditate for 30 minutes and I will tell you that way now.
मैंने मेरे जीवन के 30 मिनट मेरे गुरु को दान कर दिए.
I donated 30 minutes of my life to my guru.
जो चीज अपन दान करते हैं उसके ऊपर अपना कोई अधिकार नहीं आता.
We have no right over anything that we have donated.
ठीक उसी प्रकार से 30 मिनट आप मुझे दान कर दो, वो 30 मिनट आपके है ही नहीं.
सो डोनेट 30 मिनट्स टू मी एंड दोस 30 मिनट्स आर नॉट योर्स एनीमोर.
आज के बाद में जब आप कल से ध्यान करने बैठोगे तो आपका दिन 23.5 घंटे का होगा.
स्टार्टिंग टुमारो व्हेन यू सिट डाउन टू मेडिटेट द रेस्ट ऑफ योर डे इज ओनली 23.5 आवर्स.
और ऐसे अगर आप 45 दिन अनुष्ठान करते हो, यानी केवल आपके जगह जाएगा 22.5 घंटे.
And if you continue to do this for 45 days, then 22.5 hours of your life will be used in this.
लेकिन 22.5 घंटे में आपकी दुनिया बदल जाएगी.
But in these 22.5 hours, your world will change.
आपका जीवन सकारात्मक हो जाएगा.
Your life will become positive.
करके ही देखो ना, करके करा तो होगा, तो नहीं तो नहीं होगा, उसमें क्या.
Just try it for yourself and see if it works. Great for you. If not, doesn't matter.
आपका कुछ भी नहीं जा रहा है. मैं आपको कुछ खर्च करने को नहीं बोल रहा हूँ, पैसे दान करने को नहीं बोल रहा हूँ, किसी मंदिर में आने को नहीं बोल रहा हूँ, कोई पहाड़ चढ़ने को नहीं बोल रहा हूँ, कोई तीर्थ यात्रा करने को नहीं बोल रहा हूँ, कुछ नहीं बोल रहा हूँ.
यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू डोंट हैव टू डोनेट मनी, यू डोंट हैव टू गो टू अ टेंपल, यू डोंट हैव टू क्लाइंब अ माउंटेन.
मैं केवल कह रहा हूँ 30 मिनट अपने आप को दो.
आई एम जस्ट सेइंग गिव योरसेल्फ 30 मिनट्स.
अपने आप को दोगे ना, धीरे 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 आप ही आपके गुरु हो जाओगे.
इफ यू गिव योरसेल्फ दिस टाइम, ग्रेजुअली यू विल बिकम योर ओन गुरु.
सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, इस मार्ग में कोई अपेक्षा के साथ मत आओ.
I have just one request, do not have any expectations when you come this way.
मैं इस मार्ग में कोई अपेक्षा के साथ नहीं आया था, सिर्फ ये करना मुझे अच्छा लगता था इसलिए किया.
I did not have any expectations when I walked down this path. I only did it because I liked it.
तो आप भी इस मार्ग में कोई अपेक्षा के साथ मत आओ.
Come into this path without any expectations. You as well.
मैंने आपको कुछ मिलना चाहिए, आपका कोई अच्छा होना चाहिए, आपका कोई भला होना चाहिए, ऐसी कोई अपेक्षा से मत आओ.
Don't come with the expectation that you should get something, that good things should come to you.
Even 30 minute dhyan karne baitho na, to dhyan lagega. Ye bhi apeksha mat rakho, ye bhi apeksha hai.
When you sit down for 30 minutes, do not even have the expectation that you will reach a meditative state. That is also an expectation.
Apeksha dhyan marg ko ashuddha karti hai.
Expectation makes your meditation impure.
Dusra apeksha ka sambandh hamare sharir ke saath hota hai.
Expectation is also connected to our physical body.
और ध्यान आत्मा और परमात्मा का होता है.
And meditation is that of the soul and of God.
शरीर भाव समाप्त होने पे ध्यान का शुरुआत होती है.
Where the body association ends, that's where meditation begins.
इसलिए अपेक्षा रहित होकर के इस मार्ग में आओ.
And that's why come to this path without any expectations.
एक बार सिडनी के अंदर बहुत बड़ा फुटबॉल का मैच हुआ.
Once in Sydney there was a large football match.
उस मैच को देखने खूब सारे साधक गए थे.
Lots of meditators went to watch this match.
मैंने उनको पूछा वो मैच देखने क्यों गए.
I asked them, why did you go watch this match?
वो मैच देख के तुमको क्या मिलता है.
What did you get from watching this match?
वो मैच देख के तुम्हारी लड़की का शादी हो जाता है.
When you watch this match, did your daughter get married?
वो मैच देख के तुम्हारे लड़के को नौकरी लग जाता है.
Did your son get a job because you watched that match?
मैच देख के तुमको क्या मिलता है.
What did you get out of watching this match?
उन्होंने उत्तर दिया हमको कुछ नहीं मिलता, फुटबॉल का मैच देखना हमारा शौक है.
They said, we get nothing. Watching a football match is just a hobby for us.
मैंने उनको उत्तर दिया, ठीक, वैसा ही ध्यान को शौक बनाओ. ध्यान से अपेक्षा मत करो कि ध्यान करने से कुछ आपको मिलेगा.
I said, in exactly the same way, make meditation a hobby. Don't have any expectation that you will get something good from meditation.
इस प्रकार से आप नए नए शौक लगाते हो, वैसे इसको शौक समझो ना, शौक समझ के ध्यान चालू करो.
Just like you take on new hobbies, assume this is also a hobby. Start meditating as a hobby.
मैं इस मार्ग में कोई अपेक्षा के साथ नहीं आया.
I did not come onto this path with any expectation.
लेकिन आज जीवन के उस मुकाम पे पहुंचा हूं कि जीवन में पाने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा.
But I have reached that stage in life where there is nothing left for me to acquire.
तो मैं चाहता हूं ध्यान करके, मेडिटेशन करके आप भी उस अवस्था को प्राप्त करो जहां आपके जीवन में पाने के लिए कुछ भी बाकी न रहे.
I want that you reach this stage as well through meditation where there will be nothing left for you to attain in life.
दूसरा, ये नियमित ध्यान से संभव है.
दिस इज ओनली पॉसिबल थ्रू रेगुलर मेडिटेशन.
देखिए, घर पे बैठ करके अकेले में ध्यान करो.
सिट अलोन एट होम एंड मेडिटेट.
आपके 15 फीट पे, 20 फीट पे कोई भी व्यक्ति नहीं हो, आपका पति नहीं हो, आपकी पत्नी नहीं हो, कोई भी नहीं हो.
देयर शुड बी नो अदर पर्सन विद इन 15 टू 20 फीट ऑफ यू, नॉट इवन योर हस्बैंड और वाइफ.
ऐसा ध्यान करोगे ना तो धीरे 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 आपका आभा मंडल विकसित होगा, आपका ओरा विकसित होगा.
If you meditate like this, gradually your aura will grow and develop.
तो इससे आपका चित्त स्ट्रांग होगा, चित्त सशक्त होगा.
And your mind will become stronger.
दूसरा, सामूहिकता में ध्यान करो, सेंटर पे जाके ध्यान करो.
Secondly, meditate in a group at a center.
वो सप्ताह में एक बार, 15 दिन में एक बार, जब आपको टाइम मिले, महीने में एक बार जरूर सेंटर पे जाओ.
Once a week, once in 15 days, at least once a month, whenever you have time, go to a center and meditate.
देखिए, जिस प्रकार से कार तेज चलाना भी आवश्यक है और कार पे नियंत्रण रखना भी आवश्यक है, उसी प्रकार से हमको चित्त को स्ट्रांग करना भी आवश्यक है और चित्त पे नियंत्रण करना भी आवश्यक है.
Just as it is important to drive a car fast and then be able to control it when you're driving it fast, it's also important to strengthen the chitta and then control the strong chitta.
जब आप घर पे ध्यान करते हैं ना अकेले, तब आपका चित्त स्ट्रांग होता है, यानी आप तेज कार चलाना सीख जाते हैं.
When you meditate at home, your mind gets stronger. This is like learning to drive a fast car.
दूसरा, जब आप सामूहिकता में ध्यान करते, सेंटर पे ध्यान करते, तो आपका चित्त पे नियंत्रण हो जाता है, यानी कार को ब्रेक लगाना भी आपका आ जाता है.
When you meditate in a center, you learn to control your chitta. That is like learning how to control the fast car and brake.
आपको ये दोनों आना चाहिए.
You should know how to do both.
हजारों लोगों के बीच में बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं.
You are sitting among thousands of people and yet you feel alone.
आप देखो, भारत के अंदर कितनी बड़ी सामूहिकता है, 2-2 लाख लोगों के बीच में सामूहिकता में ध्यान करने का अवसर प्राप्त होता है.
There is such a huge collectivity in India, 200,000 people meditate at one.
तो 2 लाख दिन ध्यान करना और 2 लाख लोगों के बीच ध्यान करना कितना अंतर है?
The meditating with 200,000 people is the same as meditating 200,000 times alone.
ये दोनों समान है.
They're both the same.
इसलिए जब भी हम सामूहिकता में ध्यान करते हैं, कलेक्टिविटी में ध्यान करते हैं, हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती है.
That's why when we meditate in collectivity, we advance spiritually.
अभी कुछ दिन पहले मेरे घर के ऊपर एक साधक एक कार लेके आया.
A few days ago, a sadhak came to my house, a meditator, with a car.
उसने मुझे याद दिलाया, स्वामी जी, मैं पहले फुटपाथ के ऊपर मोजे बेचता था.
He reminded me, Swami ji, I used to sell socks on the pavement earlier.
मेरी 3 साल में इतनी प्रगति हो गई, इतनी प्रोग्रेस हो गई कि मेरी कार, मेरी मोजे की फैक्ट्री हो गई.
In 3 years, I have advanced so much that today I have a factory of socks.
और आज मैंने नई कार खरीद ली.
And today I have bought a new car.
देखो मेरा कितना प्रोग्रेस हो गया, कितनी प्रगति हो गई.
See how much I have progressed.
मैंने उसको कहा, भौतिक प्रगति को कोई महत्व नहीं.
I told him, financial progress is not that important.
सब साधकों की भौतिक प्रगति हो रही, तेरी भी हो रही है, उसमें तेरी कौन सी विशेषता है?
All of the meditators are progressing financially and therefore you are progressing as well.
देखिए, 4 घोड़ों की गाड़ी है, उसमें एक आलसी घोड़ा है, बदमाश घोड़ा है. अगर वो बाकी 3 घोड़े हैं, उसको खींच के स्टेशन पहुंचा ही देते ना.
Imagine a 4-horse carriage. If there are 3 good horses and 1 lazy horse, the 3 good horses will pull the lazy horse and he will also get to his destination.
बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से लाखों लोगों की भौतिक प्रगति हो रही है, तो तुम्हारी भी हो गई, उसमें तुम्हारी तारीफ क्या है?
In the same way, when hundreds of thousands of people are progressing financially, then you will also progress, but that's not your effort.
देखिए, आपकी पलक झपकाते ना, इतने में ध्यान में चला जाना चाहिए. ये तेरी प्रगति है, ये तेरा प्रोग्रेस है.
As soon as you close your eyes, you should enter a meditative state. That is a sign of your spiritual progress.
आपको भी कई लोगों को लगता होगा, आपकी आध्यात्मिक प्रगति कितनी हुई है, आध्यात्मिक प्रोग्रेस कितना हुआ है?
Several of you must be wondering, how much have I progressed spiritually?
आप जितने जल्दी ध्यान में जाते हैं, वो आपके आध्यात्मिक प्रगति बताता है.
The quicker you can get into a meditative state, that signifies how much you have progressed.
जैसे जैसे प्रगति होती जाएगी ना, जैसे जैसे प्रोग्रेस होते जाएगा, वैसे वैसे आपका ध्यान करने की भूमिका छोटी हो जाएगी. यानी एक क्षण में पलक झपकाते इतने में आप ध्यान में चले जाना चाहिए.
As you progress spiritually, you will realize that you can go into a meditative state in the blink of an eye.
नियमित ध्यान करने से ये संभव है.
This is possible through regular meditation.
इसलिए नियमित ध्यान करो, दूसरा सामूहिकता में ध्यान करो, दोनों ध्यान आवश्यक है.
That's why meditate regularly and also meditate in a collectivity. Both are important.
दूसरा, एकदम सिंपल मंत्र से, एक सामान्य मंत्र से हम ध्यान करते हैं.
Secondly, we meditate with a very simple, ordinary mantra.
वो मंत्र कुछ नहीं है, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ.
I am a holy soul, I am a pure soul.
दूसरा, मेरे बचपन में ये मंत्र मेरे भीतर चलता था.
When I was young, this mantra would play inside of me.
मैं एकदम 5 साल का था, 7 साल का था, तब से ये मुझे याद है.
I remember this since I was 5 years old, since I was 7.
तो उसके कारण क्या हो गया? मेरे में देह भाव कभी हुआ, देह भाव हावी नहीं हुआ.
That's why the physical body was not able to
get control. अगर मंत्र से आप ध्यान करते हो, तो मेरी 60 साल की साधना तपस्या उसके पीछे.
If you meditate with this mantra, 60 years of my practice and penance are behind this mantra.
और आज लाखों लोग इस पद्धति से ध्यान कर रहे हैं, वो लाखों लोगों की सामूहिकता इसके साथ में.
And hundreds of thousands of people are using this mantra to meditate, and it has this collectivity behind it.
तो इस मंत्र के माध्यम से हम ध्यान करेंगे.
So we will meditate using this mantra.
दूसरा कुछ नहीं. जैसे मैं बैठा हूँ ना, ऐसे बैठो.
Just sit like I am sitting.
और कुर्सी पे बैठे वो नीचे बैठ सके तो नीचे बैठो. आपका मूलाधार चक्र जमीन से स्पर्श होना चाहिए.
Those who are sitting on chairs, if you can sit down, that would be good. Your base chakra should be in contact with the ground.
परमात्मा ने जब आपको पैदा किया ना, तो आपको बैलेंस करने के लिए, आपको संतुलित करने के लिए भूमि बनाई थी.
When God gave birth to you, He made the earth to balance you.
तो जैसे आप जमीन के साथ जुड़ते हैं ना, तो जमीन आपके टेंशन को, आपके तनाव को, आपके बीमारियों को, सबको खींच देती है.
When you sit on the ground, in contact with the ground, it will absorb all of your tensions, your stresses, your diseases.
हिमालय के तलहटी में कई आदिवासी जातियां हैं, जहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, कोई दवाखाना नहीं है, फिर भी वो लोग भूमि माता को प्रार्थना करके अपनी बीमारियां ठीक करते हैं.
In the Himalayan valleys, there are several native tribes. They don't have any doctors. They pray to Mother Earth to cure their sicknesses and diseases.
और ठीक होते हुए मैंने मेरे आंखों से देखी है.
And I have seen it working with my own eyes.
पूर्ण भाव के साथ पृथ्वी को प्रार्थना करते हैं.
They pray to Mother Earth with full feeling.
अब साइंटिफिकली देखो तो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जमीन के अंदर, जैसे आप उसको समर्पित हो तो वो आपके बीमारी को खींच लेती।
If you look at it scientifically, there is an attraction energy within the earth. As soon as you surrender to this energy, it can suck out all of your negativity.
और दोनों हाथ इस प्रकार से रखो जैसे मैंने रखे ऐसे।
Place your hands like I have.
और कुछ नहीं, जो बोलेंगे उसको पूर्ण भाव के साथ बोलो, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, तब बोलो ना, तब भाव भी वो रखो कि आप सचमुच पवित्र आत्मा है।
Whatever you are saying, feel it as you say it. So when you say, I am a holy soul, feel that.
आप जो बोल रहे हो मैं पवित्र आत्मा हूँ, इसका मतलब इनडायरेक्टली आप बोल रहे हो कि मैं शरीर नहीं हूँ।
When you say, I am a holy soul, what you are actually saying is, I am not a body.
जब आप बोलोगे मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो आप इनडायरेक्टली बोल रहे हो कि मैं आत्मा हूँ, बाकी आत्मा के अलावा कुछ नहीं हूँ।
When you say, I am a pure soul, what you are saying is that you are a soul and nothing but a soul.
और आप ध्यान में इस स्थिति तक जाना चाहिए कि आपका पद, आपकी पोस्ट, आपका कलर, आपका देश, आपका रंग, आपका आप लिंग, आप पुरुष के स्त्री सब भूल जाना चाहिए।
एंड यू शुड बी इन सच अ मेडिटेटिव स्टेट दैट यू रिमेम्बर नथिंग अबाउट यू, योर पोस्ट, योर पोजिशन, योर लैंग्वेज, योर कलर, इवन योर जेंडर।
तो हम ध्यान करेंगे, पहले राइट हैंड को ना अपने तालू भाग पे रखो ऐसे।
प्लेस योर राइट हैंड ऑन द टॉप ऑफ योर क्राउन चक्रा।
थोड़ा दबाव दो हल्का सा।
प्रेस डाउन लाइटली।
उसको क्लॉकवाइज घुमाओ तीन बार।
टर्न योर हैंड क्लॉकवाइज थ्राइस।
चित्त को वहां स्थिर करो।
फोकस योर माइंड एट दैट पॉइंट।
और धीरे धीरे हाथ को नीचे ले आओ।
एंड ग्रेजुअली ब्रिंग योर हैंड डाउन।
मैं एक पवित्र आत्मा हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। मैं एक पवित्र आत्मा हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। मैं एक पवित्र आत्मा हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। अपना चित्त तालू भाग पे रखकर बैठो।
कीप योर माइंड एंड कॉन्सेंट्रेशन फोकस्ड ऑन द क्राउन ऑफ योर हेड।
अब हम प्रार्थना करेंगे।
We will now pray।
हे परमात्मा
हे परमात्मा
कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें।
प्लीज ग्रांट मी सेल्फ रियलाइजेशन।
कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। हे परमात्मा कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। तो आपको क्या अनुभूति होती है वो शरीर में अनुभव करो।
Observe the experiences that you are feeling in your body.
धीरे धीरे ना अपने दोनों हाथ अपने आंखों के सामने ले आओ, उंगलियां ऐसे अलग अलग रखो।
होल्ड योर हैंड्स अप इन फ्रंट ऑफ योर फेस विद योर फिंगर्स सेपरेटेड।
और एकदम आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलो और अपने हाथों की तरफ देखो, तो आपको महसूस होगा आपके दो हाथों के दसों उंगलियों में से ठंडे ठंडे वाइब्रेशन निकलना प्रारंभ हो गए।
ओपन योर आईज ग्रेजुअली एंड यू विल नोटिस दैट देयर इज कोल्ड वाइब्रेशंस कमिंग आउट ऑफ ईच ऑफ द 10 फिंगर्स ऑन योर हैंड्स।
दूसरा, कितने लोगों के हाथ से गरम गरम निकल रहा है वो हाथ ऊपर करो।
प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू फील हॉट एनर्जी कमिंग आउट ऑफ योर हैंड्स।
ठीक, हाथ नीचे कर लो। और कितने लोगों के अंदर से जैसे चींटियां चल रही ना, झुंझुनी चल रहा है, उस टाइप का महसूस हो रहा है।
हाउ मेनी ऑफ यू फील वाइब्रेशंस एज ऑफ एंट्स आर वॉकिंग ओवर योर हैंड्स।
हाथ नीचे कर लो। अब कितने लोगों के हाथ में से ठंडा ठंडा लग रहा है।
हाउ मेनी ऑफ यू फील कोल्ड वाइब्रेशंस कमिंग आउट ऑफ योर हैंड्स।
तब मैं हाथ ऊपर मत करना।
डोंट रेज योर हैंड फॉर एवरीथिंग।
नहीं नहीं तो मेरे को बताने में दिक्कत जाएगी।
अदरवाइज आई हैव ट्रबल एक्सप्लेनिंग इट।
एक्चुअली हाथ में से गरम गरम निकल रहा है, इसका मतलब ना अपने चक्रों के अंदर कोई कैचेस है वो निकल रहे हैं, क्लियरेंस चालू हो गया, लेकिन अपने को ध्यान ज्यादा करने की आवश्यकता है।
When hot energy comes out of your hands, it means that the different chakras of your body are being cleansed, but there is a need for more meditation in order for it to be completed.
नीचे का लेवल है, उसके ऊपर का लेवल के हाथ में से कुछ झुंझुनी सरी का चल रहा है।
That is the lowest level. The next level is the vibrations.
अच्छा, तीसरा है कि हाथ में से ठंडा ठंडा चल रहा है, तो ये बहुत अच्छा साइन है।
The third level is the cold vibrations. That is the good. That is a good level.
अच्छा, दूसरा एक और अनुभव आया होगा, राइट हैंड में वाइब्रेशन ही नहीं आए, ऐसे कितने लोग हैं।
हाउ मेनी ऑफ यू डिड नॉट फील एनीथिंग इन योर राइट हैंड।
राइट हैंड में वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं आए आपको, नहीं आए आपको, नहीं आए पीछे। हाँ, खड़े रहिए, खड़े हो जाए। हाँ, उसके अंदर जो आपका राइट हैंड है ना, ये लेफ्ट लिवर पे रखो।
प्लेस योर राइट हैंड ऑन योर लेफ्ट लिवर।
आके बंद करो।
क्लोज योर आईज।
लेफ्ट हैंड ऐसा सामने रखो, आके बंद करो।
लेफ्ट हैंड आउट इन फ्रंट ऑफ
यू। रखा है ना राइट हैंड, वहां पे चित्त रखो।
Place your attention on the point where you've touched your body.
उसके बाद में दोनों हाथ को स्पर्श करो एक दूसरे के साथ।
Now touch your hands against each other.
तो आपको महसूस होगा आपका राइट हैंड गर्म हो गया।
You will notice that your right hand has turned hot.
हुआ है ना? क्यों हुआ है? अब आपका ही हाथ, आपकी बॉडी गर्म क्यों है? इसका मतलब आपका लिवर गर्म है।
It's your hand, your body. Why has it become hotter? It's because your liver is hot.
लिवर गर्म, इसका अर्थ क्या है? आपको कुछ तो भविष्य की चिंता है।
If your liver is hot, it means that you're worried about the future.
तो इसका उपाय क्या है? पूर्णिमा के रात को जब चंद्रमा का लाइट आपको दिख रहा है, चंद्रमा आपको दिख रहा है, ऐसे यहाँ पे हाथ रख करके प्रार्थना करने का कि चंद्र देवता कृपया मेरे चित्त को शुद्ध करो, मेरे चित्त को पवित्र करो, तो धीरे धीरे ना चित्त शांत होगा।
द सोल्यूशन इज दैट ऑन अ फुल मून नाइट आउटसाइड इन व्यू ऑफ द मून सिट एंड मेडिटेट लाइक दिस एंड प्रे टू द मून टू मेक योर माइंड प्योर।
दूसरा, लेफ्ट हैंड में किसके वाइब्रेशन नहीं आए वो हाथ ऊपर करो।
Did anyone not feel any vibration in their left hand? Raise your hands.
ऐसे कौन है जिसके लेफ्ट हैंड में वाइब्रेशन नहीं है? सब क्या गए? देखो एक्चुअली क्या रहता है, डॉक्टर एक ऐसी जगह रहती है जहां तुम बताओगे ना उतना वो बताएगा, नहीं बताओगे तो उसको जगह अच्छा ही है सब.
When you go to a doctor, it's important to tell the doctor what's wrong with you. If you don't, then he will assume you're okay.
आपके नहीं आए लेफ्ट हैंड में? हाँ नहीं है ना. हाँ राइट हैंड को छाती पे रखो.
Place your right hand on your chest.
बीच.
Right in the center of your chest.
हाँ right hand को रखो, उसके ऊपर left hand रखो.
Place your left hand over that. Close your eyes.
चित्त को वहीं स्थिर रखो. चश्मा निकाल लो, चश्मा पहना शायद. हाँ निकाल लो चश्मा.
Focus your attention at that spot where you're touching your body.
और हृदय चक्र पे स्थिर रखो. उस तो भी टेंशन है आपको, इसलिए ऐसा हो रहा है. राइट हैंड रख के उस पर लेफ्ट हैंड रख के पूरा चित्त वहाँ एकाग्र रखो.
Focus your attention on your heart chakra.
अब दोनों हाथ सामने करो. अब आ रहा है क्या? देखो.
Now hold your hands out in front of you. Do you feel something?
अब आ रहा है दोनों हाथों में. बैठ जाओ. एक्चुअली क्या रहता है, यहाँ पे आप कोई टेंशन लेकर के बैठोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये आपका हार्ट चक्र पकड़ेगा. हार्ट चक्र पकड़ेगा तो एनर्जी जो ऊपर की ओर जाना चाहिए वो नहीं जाएगी, यहाँ स्टक हो जाएगी.
इफ यू हैव एनी टेंशंस देन योर हार्ट चक्र इज ब्लॉक्ड एंड देन व्हेन यू
रुकेगा वहां ब्लॉक नहीं होगा. ब्लॉक तो एकदम खत्म, ब्लॉक नहीं.
योर हार्ट चक्र इज
ऑब्स्टिकल खड़ा करेगा.
ओके. क्रिएटिंग ऑब्स्टिकल्स. सो व्हेन द एनर्जी राइजेस अप इट डज नॉट पास थ्रू द हार्ट चक्र एज इट शुड.
दूसरा, जब मैं हार्ट चक्र बोलता हूँ तब उसका संबंध हार्ट से मत लगा लेना.
व्हेन आई से हार्ट चक्र डोंट एसोसिएट दैट विद द हार्ट.
हार्ट अलग है, हार्ट चक्र अलग है.
द हार्ट एंड द हार्ट चक्र आर डिफरेंट थिंग्स.
लेकिन इतना निश्चित है हार्ट चक्र ब्लॉक होने से बाद में हार्ट की प्रॉब्लम क्रिएट होती है.
बट द हार्ट चक्र व्हेन इट इज ब्लॉक्ड कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर द हार्ट.
एक्चुअली क्या है, शरीर को जिसको टच करके देखते हैं उसका ज्ञान मेडिकल साइंस में है.
मेडिकल साइंस हैज नॉलेज अबाउट द बॉडी दैट यू कैन टच एंड ऑब्जर्व.
लेकिन विचारों का अध्ययन मेडिकल साइंस में नहीं है.
बट मेडिकल साइंस कैन नॉट स्टडी थॉट्स.
यानी मेडिकल साइंस में ऐसी कोई गोली नहीं बनी जो गोली एक सवेरे खा लो एक शाम को खा लो दिन भर विचार ही नहीं आएंगे.
There has been no pill discovered in the medical world where you can have one in the morning, one in the evening, and you won't have any thoughts.
ऐसी कोई गोली बनी है क्या?
Do you have such a pill?
नहीं बनी.
There is.
जब तक ऐसी गोली नहीं बनती, जब तक ध्यान एकमात्र मार्ग है.
Until such a pill is made, meditation is the only way.
दूसरा क्या होता है? जब शरीर को कैंसर हो जाता है, तब डॉक्टर बोलता है तुमको कैंसर हो गया.
When the body has cancer, the doctor says you have cancer.
लेकिन योगी आपके शरीर को कैंसर होने के 6 महीने पहले आपको बता सकता है कि आपको कैंसर होने वाला है.
बट अ योगी समवन हु मेडिटेट्स कैन टेल यू 6 months बिफोर यू गेट कैंसर दैट यू आर गोइंग टू गेट कैंसर.
जिस व्यक्ति को कैंसर होता है ना उसके 6 महीने पहले उसके विचार दूषित हो जाते हैं, उसका ओरा दूषित हो जाता है, उसका ओरा काला हो जाता है, फिर धीरे 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 उसका इफेक्ट उसके बॉडी के ऊपर होता है.
समवन हु इज गोइंग टू गेट कैंसर 6 months बिफोर दे गेट इट देयर ओरा विल बिकम इम्प्योर देयर थॉट्स बिकम इम्प्योर.
इसलिए योग के अंदर ये सब कुछ आता है, शरीर से अलग विचारों का भी शरीर का अध्ययन होता है.
योगा इंक्लूड्स ऑल ऑफ दिस बियॉन्ड द बॉडी द स्टडी ऑफ थॉट्स.
दूसरा, आज से 20 साल पहले मैंने अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज में जब ओरा का बात किया था तो उन्होंने कहा स्वामी ये आपकी कल्पना है, ओरा वगैरह कुछ नहीं होता.
20 years ago when I talked about the aura in Ahmedabad they told me Swami ji you're imagining it, there is nothing like that.
Lekin abhi machine aa gayi jis machine ke dwara aura ka adhyayan kiya ja sakta hai, aura ko dekha ja sakta hai.
But today machines have been developed through which we can study the aura.
Maine Delhi mein sansad logo ka shibir liya.
I held a shibir in Delhi for parliamentarians.
Aur sansad logo maine kaha ki aap ek kaam karo jo bhi vyakti bole na main adhyatmik guru uska aura check karo, uska aura agar acha hai to usko 5 saal ke liye license issue karo.
I told them that if someone says that they are a guru, take a picture of their aura and if the aura is good, give him a license for 5 years.
जैसे ड्राइविंग का लाइसेंस दे दे कि नहीं आरटीओ, उसी प्रकार से गुरुओं का लाइसेंस इश्यू करो.
जस्ट लाइक यू गिव अ ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू लाइसेंसेज फॉर गुरुज.
उसका ओरा अगर अच्छा है उसको 5 साल के लिए फिर रिन्यू कर दो.
If his aura is good, you can renew it for another 5 years.
अगर उसका ओरा खराब है उसको बोले 1 साल तो घर बैठ अब ध्यान कर.
If his aura is bad, then ask him to sit at home and meditate for a year and come back.
तो ऐसा अगर करते हैं ना, नहीं ऐसा अगर करेंगे तो बहुत लोगों का फायदा होगा.
If we do this, it will benefit a lot of people.
क्या होता है माने गुरु अपनी साधना छोड़ करके कार्यक्रम 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 करते हैं और बाद में जाके उनकी खुद की स्थिति खराब हो जाती है।
Gurus sometimes stop their own practice in order to perform, in order to conduct workshops, and this results in their own state becoming bad.
तो ऐसा लाइसेंस यू करेंगे तो क्या होगा? गुरुओं को उनकी स्थिति खराब होने के पहले पता चलेगा।
If we have such licenses, then gurus will know that their state is deteriorating before it becomes very bad.
एक आध्यात्मिक गुरु का अगर पतन होता है तो लाखों साधकों का भाव टूटता है।
And if one spiritual leader is destroyed, then hundreds of thousands of his followers are also affected.
तो मैंने सांसदों को ये राय दी थी, लेकिन उन्होंने वो कानून नहीं बनाया।
So I advised the parliamentarians to do this, but they haven't made the rule yet.
तो पिछली बार नहीं बनाया, हो सकता है इस बार बनाए, अभी देखते हैं।
They didn't the last time, maybe this time they will listen to me, let's see.
नहीं, और ये बात मैंने थियोसॉफिकल सोसाइटी में कही।
And I said this at the Theosophical Society.
तो लंदन में कुछ अंग्रेज बोले तो अभी तुम्हारा भी तो ओरा बहुत पुराना है, 15 साल पुराना है, 10 साल पुराना है, तुम अभी का ओरा दिखाओ ना।
एंड सम मेडिटेटर्स सेड स्वामी जी योर ओरा पिक्चर इज आल्सो वेरी ओल्ड, अबाउट 15 इयर्स ओल्ड, यू शुड गेट अ न्यू पिक्चर एज वेल।
तो एक डॉक्टर के क्लिनिक में मुझे लेके गए।
सो दे टुक मी टू द क्लिनिक ऑफ अ डॉक्टर।
वहां पे जैसे सीटी स्कैन करते ना वैसे मेरे दोनों हाथ एक मशीन के ऊपर रखे।
Just like they would do a CT scan, they placed my hands on a machine.
और मशीन ने हाथ में से जो स्पंदन निकल रहे थे, जो वेव्स निकल रहे थे, वो पकड़ करके आधे घंटे के बाद में एक 15 पेज की रिपोर्ट तैयार की।
The machines captured the vibrations that came out of my hands. After about 15 minutes, a report was prepared.
और रिपोर्ट के बाद में उन्होंने मुझे पहला प्रश्न किया कि आप जिंदा कैसे हो?
When they saw the report, the first question they asked me was, "How are you alive?"
मैंने उनको पूछा, ऐसा क्यों कर रहा?
I asked them, why are you asking this?
वो बोले ये उस व्यक्ति का हो रहा है जिसका शरीर भाव पूर्णतः छूट गया, तो शरीर भी छूट जाना चाहिए।
They said this is the report of someone who has lost their body entirely.
मैंने उनको कहा ये मेरी ध्यान की स्थिति है, 24 घंटे इस स्थिति में नहीं रहता।
I told them this is my meditative state. I'm not in this state for all 24 hours of the day.
कहने का अर्थ है साइंस का डेवलपमेंट इतना हो गया है कि अभी आध्यात्मिक स्थिति को भी जांचा जा सकता है, आध्यात्मिक स्थिति को भी परखा जा सकता है।
What I mean to say is that science has advanced to a stage where we can even measure and see spiritual development and progress.
बाद में वो ओरा की रिपोर्ट पूरे दुनिया में सर्कुलेट हुई।
Later, this aura report was circulated all over the world.
और जब मैं श्रीलंका गया ना तो श्रीलंका बुद्ध मंदिर के जो मेन प्रिस्ट है वो लेने के लिए मुझे बाहर आए, बोले स्वामी जी आपका ओरा गौतम बुद्ध के ओरा जैसा पवित्र है।
When I went to Sri Lanka, a priest at a temple came out to meet me. And he told me that your aura is that like that of Gautam Buddha.
कहने का अर्थ है ओरा का अभी अध्ययन किया जा सकता है, ओरा से आध्यात्मिक स्थिति को जांचा जा सकता है। आज सदगुरु को पहचानना जितना आसान है इतना आज के पहले कभी नहीं था।
What I mean to say is that spiritual development can be measured, it can be studied, and it has never been as easy as it is today to see spiritual progress.
आध्यात्मिक स्थिति को जांचने का कोई मार्ग ही नहीं था, कोई उपाय नहीं था।
Because earlier there was no way to measure spiritual development.
मैं तो कुछ तो बड़बड़ करता हूँ, तुमको कोई प्रश्न हो तो पूछो।
I'm going to keep talking. Otherwise, if you have any questions, ask. Otherwise, I'll keep talking.
तुमको कोई प्रश्न हो तो पूछो।
We have one request with a question because the time is limited. So if you would like to ask a question, please straight away ask the question, and best would be to ask it short and precisely. The more direct the question is, the more direct Swamiji can answer. And the other request is that we don't ask questions about our problems, physical problems, health problems, problems in our lives. Even during the last retreats, there were a few questions about what is my blockage on the spiritual path, which chakra is blocked. And even there, Swamiji said he has actually surrendered all his chakras to his gurus and automatically they were cleared. So we should ask, he recommended, questions which are interesting for all of us, for the general participants. So if you have a question, you can come forward. So best would be to come to the right side, there near the window, and then you can just line up. Yeah. But it's also possible that maybe we can also pass it on. We have a wireless microphone. So if you have a question, then you can just raise your hand and we will hand you the microphone.
Present. Okay. What question is left if we can't ask any question about problems?
It's about the meditation, spirituality, questions like that. Because Swamiji actually wants to give us the knowledge, the spiritual knowledge, so that we will be able to solve our problems ourselves. In the beginning, Swamiji asked, people asked a lot of about their problems, and Swamiji put his attention on that, and they dissolved. But what happened is that people didn't meditate. Meditation also solved the root of the problems, and in a way, other problems came up, and they became, in a way, dependent on Swamiji. Swamiji doesn't want us to become dependent. He wants us to become our own guru, and that's the reason he would like to guide us on spiritual progress.
Swamiji, first of all, thank you. How can one judge their own progress in this meditation cycle and gauge or understand that whether I'm really progressing or uplifting? Is there any method or symbols or signs which will help us understand that, yes, I am growing up?
हम आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं ये हम कैसे खुद से जांच सकते हैं कोई साइन है जिससे पता चले कि हमारी प्रगति हो रही है या नहीं
मैंने अभी तो बताया था पलक झपकाते इतने में आप अगर ध्यान में जाते हैं तो आपका आध्यात्मिक स्थिति अच्छा है
आई जस्ट टोल्ड यू इफ यू कैन गो इनटू अ मेडिटेटिव स्टेट इन द ब्लिंक ऑफ एन आई देन यू हैव अ गुड स्पिरिचुअल स्टेट
ध्यान करने के लिए आपको प्रयत्न नहीं करना पड़ना चाहिए
यू शुडंट हैव टू ट्राई टू मेडिटेट
आपका आपके शरीर पे नियंत्रण हुआ कि नहीं वो देखो आपके विचारों पे नियंत्रण हुआ कि नहीं देखो आपके बुद्धि पे नियंत्रण हुआ कि नहीं देखो देखो ना अपना अपना देखो
सी इफ यू कैन कंट्रोल योर बॉडी सी इफ यू कैन कंट्रोल योर थॉट्स सी इफ यू कैन कंट्रोल योर इंटेलेक्ट
अभी नेपाल में मैंने पत्रकारों की कॉन्फ्रेंस ली मैंने पत्रकारों को कहा आप दुनिया भर के लोगों का अध्ययन करते हो कभी खुद का तो करो
आई हैड अ वर्कशॉप फॉर जर्नलिस्ट्स इन नेपाल आई टोल्ड देम दैट यू स्टडी प्रॉब्लम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव यू एवर स्टडीड योरसेल्फ
इसलिए ना हम अपने को छोड़ के दुनिया का अध्ययन करते
वी लीव आर सेल्स बिहाइंड एंड ऑब्जर्व एवरीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड
जैसे अपना जन्म होता ना हम नर्स को देखते हैं फिर माँ को देखते हैं फिर बाप को देखते हैं फिर दुनिया को देखते 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 पूरा जीवन समाप्त हो जाता है लेकिन कभी खुद को नहीं देखते
When we are born, we look at the nurse, then we look at our mother, the rest of the family, the rest of the world, and we look outside the whole life. We don't look at ourselves.
तो सदगुरु एक ऐसा माध्यम है जो आपको अंतर्मुखी करने के लिए प्रेरित करता है आपको अपने को जानने के लिए प्रेरित करता है
A living guru is such a medium that will inspire you to look inside, who will inspire you to get to know yourself.
तो ध्यान में अपने आप को जानो
So know yourself in meditation.
Swamiji? My question is, why is it difficult for me to speak with other people about samarpan meditation?
मेरे लिए क्यों मुश्किल है दूसरों से समर्पण ध्यान के बारे में बात करना?
क्या?
उनको समर्पण ध्यान के बारे में किसी और से बात करने में दिक्कत होती है वो क्यों होता है
क्यों दिक्कत होगी?
Why is it a problem? Why can you not?
I feel that I can't find the right words and
उन्हें लगता है कि उन्हें सही शब्द नहीं मिल रहे
नहीं पहली बात तो क्या है आप मेरे पे चित्त रखे बोलना चालू करो
फर्स्टली पुट योर अटेंशन ऑन स्वामी जी एंड देन ट्राई टू टॉक अबाउट इट
जैसे भी ये कार्यक्रम में आए मैंने क्या बातें करी वो बातों को याद रखो उसको बोलना चालू करो
नाउ यू हैव कम टू दिस प्रोग्राम यू हैव हर्ड व्हाट आई हैव सेड रिमेंबर दोज एंड टेल अदर पीपल अबाउट दीज थिंग्स
तो उसमें क्या होगा आपका चित्त एक जीवंत व्यक्ति पे होगा एक जीवंत ऊर्जा जीवंत एनर्जी आपको प्राप्त होगी
सो योर माइंड विल बी फोकस्ड ऑन अ लिविंग गुरु एंड दिस एनर्जी विल फ्लो थ्रू यू
एक्चुअली आपके भी हार्ट चक्र में दिक्कत है इसीलिए ना वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो डर के मारे नहीं करते आप एक बार शुरू हो जाओ फिर शुरू हो जाएगी
देयर इज अ प्रॉब्लम इन योर हार्ट चक्र That's why you're worried, should I not? Once you get started, you'll go on a roll and keep doing.
Actually, क्या रहता है तुम्हारी स्थिति कैसी है तुमको क्या लग रहा है उधर छोड़ दो तुम बताना चालू कर दो एकदम क्लियरेंस कर दो जाएगा
Don't worry about what your state is. Just start talking about it and then you will yourself feel the clearance in yourself as well.
मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ. ये ना मेरे गुरु मतलब एक प्रेशर पाइप था जहाँ से खूब तेजी के साथ पानी बह रहा था.
Let me give you an example. My guru was a pressure point through which water was flowing with a lot of pressure.
मेरी भी स्थिति तुम्हारी जैसी थी.
My state was like yours.
माने मैं क्लास के अंदर सबसे पीछे मोटे लड़के के पीछे छुप के बैठता था कि टीचर मेरे को नहीं देखे.
I used to sit right at the back of the class behind the fat guy so the teacher wouldn't see me.
और वो मैं बोलने के अंदर भी एकदम कमजोर था, एकदम वीक था.
I was very, very weak in speaking as well.
जबकि अभी मैं ढाई ढाई घंटे प्रवचन करता हूँ.
And now I can talk for 2.5 hours at a time.
तो कैसे हुआ?
How did that happen?
माने मैं ऐसे ही गंदा पाइप था जिसके अंदर कचरा था, जिसके अंदर मिट्टी थी, लेकिन ये पाइप इस पाइप के साथ जुड़ गया. तो क्या हुआ? इधर से पानी घुसा, इधर से निकला, इधर से घुसा, इधर से निकला. तो उसी प्रकार से ये पानी नाली में गया तो भी ये पाइप स्वच्छ हो गया, ये पानी किसी ने पिया तो भी पाइप स्वच्छ हो गया.
So I was like a pipe that was blocked with dirt and mud, and when this pipe was connected with the pipe with a lot of pressure, the water pushed the dirt out of the pipe. Now whether that dirty water went into a gutter or whether it was used by someone, the point is that my pipe was cleansed.
दूसरा ये ज्ञान मैंने लाखों लोगों को दिया, तो लाखों लोगों का भला हुआ कि नहीं मेरे को नहीं मालूम, मेरा भला हो गया.
This knowledge I have spread to hundreds of thousands of people. I don't know if all of them received any benefit from this, but I was benefited.
मैं आपको क्या उदाहरण दे रहा हूँ? यहाँ से जो पानी गिरा वो नाली में गया तो भी ये पाइप स्वच्छ हो जाएगा, ये पानी किसी ने पिया तो भी ये स्वच्छ हो जाएगा.
The example I'm giving you is the water that comes out of that pipe, whether it goes into a gutter or whether someone drinks it, the pipe will be cleaned.
Yani maine wo gyan aapko diya, aapne liya to bhi main clear ho gaya, aapne nahi liya to bhi main clear ho gaya.
I gave you that knowledge. If you took it, I'm cleansed. If you didn't take it, I'm still cleansed.
Isliye kuch nahi, aap ek baar batana chalu kar do, automatically energy kaam karna chalu kar de.
So there's nothing to it, just start talking about it and you will automatically be cleansed by the energy.
Aur dusra na kuch din dhyan karke meditation karke apni sthiti achhi karo.
The other thing is meditate for a few days and improve your own state.
Kya hota hai matlab dhyan karte hai dheere dheere muladhara chakra acha hota hai, swadhishthan acha hota hai, nabhi achhi hoti hai. Nabhi achhi hone ke baad mein itne activate ho jati hai ki wo andar aap reh nahi sakte, andar se aayega. Mane prachar karne ka zarurat nahi, prachar aap se ho jana chahiye.
Once you start meditating, the energy will rise gradually and cleanse all of your chakras as it rises. When your navel chakra is cleansed, there will be so much activity that you will feel like you must talk about it. You don't need to make the effort, it will just happen, you will talk about it.
जैसे मेरे अंदर भाव है कि जो कुछ मेरे को मिला है वो सबको मिलना चाहिए.
I have the feeling that everyone should get what I have received.
तो ऐसा भाव जिस दिन तुम्हारे अंदर आ जाएगा, तुम्हारा नाभि चक्र डेवलप हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली तुम बोलोगे नहीं, तुम्हारे आस्ते बोलना चालू हो जाएगा. फिर तुम चुप रहना चाहो तो भी नहीं रह सकते.
When you get this feeling, you will automatically start talking, your navel chakra will be strengthened, then even if you don't want to, it will come out of you.
इसलिए मेरे को ऐसा लगता है प्रचार बाद में करो, पहले कुछ दिन ध्यान करके अपनी स्थिति अच्छी करो, खुद मेडिटेशन करो, खुद की अनुभूति लो, खुद का अनुभव लो. जो अपन अनुभव के आधार पर बोलते हैं ना, तो एक सत्य बोलते हैं और सत्य के एक अलग वाइब्रेशन देते हैं.
So spread the message of Samarpan later. First meditate yourself, improve your own state, get your own experiences. And then when you talk about these experiences, they will ring of the truth and that has its own vibration.
दूसरा आप देखो ना, इतनी सारी बातें कही, कौन से पुस्तक की कही? पुस्तक की एक अक्षर भी मैंने पढ़ा नहीं है.
I have talked about so many things today, but I have not told you anything that I have got from books.
और लंदन में थियोसॉफिकल सोसाइटी में लेक्चर देने जाता हूँ.
I go to the Theosophical Society in London to give discourses.
और उन्होंने तीन तीन मंजिल बड़ी लाइब्रेरी बना रखी है, वो सब घोल के पी गए.
They have libraries of 3 floors and I could tell them more than those libraries could.
और मेरे को वो बुलाते हैं जबकि मैंने एक अक्षर भी पढ़ा नहीं.
And they invite me for discourses although I've read nothing.
तो मैं उनको कहता हूँ तुम गाय का चित्र साल भर तक देखते हो, गाय का दूध एक दिन पीते हो.
I tell them you look at a picture of the cow the whole year and then you drink the milk of the cow once a year.
बिना जीवंत गाय के गाय का दूध नहीं मिल सकता ना, चित्र की गाय दूध नहीं दे सकती.
Without a living cow, you cannot drink milk. A cow in a picture cannot give you milk.
ठीक इसी प्रकार से पुस्तकों का ज्ञान कभी अनुभूति नहीं करा सकता.
In the same way, the knowledge of books cannot give you experience.
अनुभूति कराने के लिए आपको जीवंत गुरु की आवश्यकता होती.
You need a living guru in order to get experience.
जब मैं मुंबई में आया ना नया नया, तो एकदम छोटे छोटे शिविर होते थे, 10 लोगों के शिविर, 20 लोगों के शिविर.
When I first came to Mumbai, I used to have very small workshops, 10 people, 20 people.
वहाँ ना एक डॉक्टर आते थे जिन्होंने 30 साल से ध्यान के ऊपर पुस्तकें लिखी थी.
A doctor used to come to these events. He had written books about meditation for 30 years.
और वो हर शिविर के बाद बोलते हैं, स्वामी जी आज आपने तो प्रवचन में ये कहा, उस पुस्तक में तो ये लिखा हुआ है.
And after every discourse, he would say, Swamiji, today you said this in the discourse, but that book says that.
और प्रत्येक प्रवचन के बाद में वो ऐसी बहस करते थे.
And he would come and argue with me after every discourse.
और वो खूब उम्र में बड़े थे, मैं उनकी खूब रिस्पेक्ट करता था.
He was advanced in age, and I used to respect him a lot.
एक दिन मैंने उनको कहा, डॉक्टर साहब एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे घर कल अंगूठा छाप बंद करके आ सकते हो क्या?
One day I told him, Doctor, I have a request. Can you come to my home tomorrow as an illiterate person?
तो वो बोले हाँ, हंसने लग गया, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैंने कहा आओ फिर बता दो.
He started laughing and said, yes, but why are you saying this? I said, come then I'll tell you.
दूसरे दिन सवेरे 6 बजे मैं ध्यान करने बैठा था, वो भी आए.
Next day I was meditating at 6 in the morning, he arrived.
और उनका 1.5 घंटे ध्यान लगा.
And he meditated with me for 1 hour and 45 minutes.
उन्होंने पूछा, स्वामी मैं 30 साल से ध्यान के ऊपर पुस्तकें लिख रहा हूँ, इतना अच्छा ध्यान, इतना गहन ध्यान आज तक कभी नहीं लगा, क्यों?
He said, I've been writing books about meditation for the last 30 years, but I have never been in such a deep state of meditation all of these years. Why?
मैंने उनको समझाया, आप कार लेके आए हो, कार से घुस गए मेरे घर में.
I asked him, you've come here by car, but did you bring the car into my house?
आप कार बाहर खड़ी करी और पैदल पैदल अंदर आए.
You parked the car outside and then walked into my house.
ठीक उसी प्रकार से पुस्तकों के ज्ञान के साथ में परमात्मा को पाया ही नहीं जा सकता.
In the same way, knowledge of books, you cannot acquire God through the books.
आज आप पुस्तकों का सब ज्ञान छोड़ करके आए, अंगूठा छाप बंद करके आए, इसलिए आज आपको अनुभूति हुई और आज आपको ध्यान लगा.
Today you left all of that knowledge of the books behind, came as an illiterate person, and that's why you experienced this.
तो मेरे को ऐसा लगता है, कुछ दिन आप ध्यान करो, ध्यान करके अपनी स्थिति अच्छी करो, उसके बाद में जैसे ही नाभि चक्र आपका अच्छा होगा ना, आप चुप बैठ नहीं सकते, ऑटोमेटिकली ध्यान का प्रचार होगा, करना नहीं पड़ेगा. अभी आप बोल रहे ना मेरे से नहीं होता, मतलब कहीं कभी मैं जीवित है ना.
So meditate for a few days, and when your Nabhi Chakra, when your Navel Chakra is developed, then automatically you will start talking about meditation. Right now you're saying, I cannot, that means there is still an I inside of you.
जब मैं मरेगा ना, तब चालू होगा प्रचार.
When the I dies, then you will be able to spread the message.
मैं बहुत आखिरी में जाता है अपने को पता नहीं चलता, मैं कर रही हूँ, मेरा हो रहा है.
This I goes right at the end and we don't know that it's still there.
Apna ye mai samapt hona chahiye. Ye mai samapti hi to dhyan hai.
When this I ends, then meditation starts.
Mai kya rehta hai? Apne sharir ka ahankar rehta hai. Jab aap sharir star ke upar hai, tab se aapse kaam nahi hoga.
What is this I? That is the arrogance of the body. If you're on that level, then you cannot do this work.
Aur koi prashn?
Other questions? We have a lady at the back there in pink who's been waiting for a very long time. Can you see at the back as well who's raising their hand then? Can you wait for a second? Sorry, we just want Yuta to go first. You're next. Thank you. अच्छा, यू कैन आस्क इफ योर माइक्स वर्किंग, गो अहेड.
जिनके हाथ में माइक है उनको ही पूछना था ना फिर.
कैन यू हियर मी? सॉरी, यस
जी.
ओके, वेन यत कैनर वास सागत देन फ्राग इच यत. Und zwar, eigentlich bin ich nur neugierig. Eigentlich ist gar keine richtige Frage. Wie ist denn das, wenn man erleuchtet ist? Muss man dann alles, also ich soll ja alles Gott überlassen, aber wenn ich jetzt zur Arbeit gehe oder so, oder meine Finanzen planen muss oder Steuerberatung machen muss oder so, dann muss ich mir ja auch Gedanken machen, wie plane ich das und so. Und überlasse ich das auch alles Gott oder... Ich muss ja auch meine Intelligenz benutzen. Was ist das? Wie mache ich das?
ये पूछ रही है, इनका सवाल नहीं, वो बहुत curious है, उनको जानना है कि जब किसी को बुद्ध की स्थिति मिल जाती है, जब कोई पूरी तरह से जगा हुआ होता है, तो जिंदगी कैसे होती है, आम जिंदगी कैसे होती है. जैसे अगर आपको कोई प्लान बनाना है, पैसे के बारे में सोचना है, तो क्या आप सोचते हैं या तभी भी नहीं सोचते, कैसे होता है?
प्रश्न नहीं समझा मेरे को.
मोक्ष की स्थिति मिलने के बाद आपकी आम जिंदगी कैसे होती है, आप रोजाना चीजें कैसे करते हैं, आपके रोजाना काम, जैसे अगर किसी की चीज के बारे में आप प्लान बना रहे हो तो आपको कुछ सोचना पड़ेगा कि आप सोचते हैं या
थोड़ा ना, ये मोक्ष का स्थिति का प्रश्न जापानी लोग ज्यादा पूछते हैं.
जापानीज पीपल आस्क अबाउट दिस अलॉट.
वो कर्मों के बारे में भी खूब पूछते हैं.
दे ऑल्सो आस्क अलॉट अबाउट कर्म.
वो थोड़ा कर्म चक्र को मैं समझा लेता.
सो लेट मी एक्सप्लेन दिस साइकिल ऑफ कर्म.
देखिए यहाँ पे समझ लो आपका जन्म हुआ है और ये पूर्ण चक्र आपको पूर्ण करने का है.
So assume that you were born up there at the top and then you have to complete this entire cycle.
तो जापानी लोग बोलते हैं जब सब कर्म हमको भोगने के ही है फिर ध्यान काय को करने का.
So they say if we have to bear all of our karma anyway then why meditate?
तो मैं उनको बोलता हूँ कि कर्म अगर ध्यान करोगे तो ध्यान में आप लाखों लोगों के साथ जुड़ोगे, सामूहिकता में जुड़ोगे, तो जो कर्म के भोगने के उसकी एहसास आपको नहीं होगा.
So I tell them that when you meditate, you are connected with a collectivity of hundreds of thousands of souls. So when you bear this karma, you won't feel the pinch of it. You won't be hurt by this karma.
मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ.
Let me explain it differently.
देखिए जैसे पानी का एक ग्लास है, उस एक ग्लास पानी के अंदर एक चम्मच हम काली शाही डाल दें तो एक चम्मच काली शाही से पूरा ग्लास काला हो जाएगा.
Assume that you have a glass of water. If you put a spoonful of black ink into this glass, the entire glass becomes black.
लेकिन वही एक चम्मच काली शाही गंगा नदी में डाल दो तो कहाँ चली गई पता नहीं चलेगा.
But if I put the same spoon of black ink into the river Ganga, then you won't know where it has disappeared.
ठीक उसी प्रकार से आप मैं करके मैं के अहंकार के साथ अगर अपने कर्म भोगते हो तो छोटे से कर्म भी आपके जीवन को दूषित कर देते हैं.
If you associate with the I and then bear your karma alone, then even the smallest of problems can appear very, very big to you.
लेकिन आप ध्यान करते हो, सामूहिकता में जाते हो, तो automatically क्या होगा? वो सारे कर्म सबके बीच में विरहित हो जाते हैं.
But if you meditate and are associated with the collectivity, then all of your karma will be dissolved without any unease to you.
पूर्व जन्म के बुरे कर्म भोगना ही पड़ते हैं.
The karma of the past life you must bear.
अगर अकेले भोगते हो तो उसकी तकलीफ ज्यादा होती है, सामूहिकता में भोगते हो तो उसकी तकलीफ कम होती है.
If you bear them alone, then you have to suffer more. If you bear them in a collectivity, then you have to suffer less.
तो आप ध्यान करते 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 इस स्थिति तक पहुंच जाते हैं जब आपके हाथ से आपके सारे बुरे कर्म समाप्त हो गए.
So as you meditate, you will reach this state where all of the karma of the past life have now been resolved.
उसके बाद में आपका ओरा, आपका हवामंडल इतना अच्छा हो गया कि आपके हाथ से अब बुरे कर्म होते ही नहीं.
Now your aura has become so pure that you cannot do any negative karma.
दूसरा ना यहाँ एक बात समझने की है, बुरा कर्म करने के लिए भी बुरी एनर्जी चाहिए.
In order to do bad action, you need bad energy.
अगर आपके पास में बुरी एनर्जी नहीं है तो आपके बुरा कर्म होगा ही नहीं.
If you don't have negative energy, then you won't be able to do negative.
तो यहाँ आपको ये स्थिति प्राप्त हो जाती है कि आपके पास में बुरे कर्म होते ही नहीं है क्योंकि बुरी एनर्जी आपके पास नहीं रहती.
So here you've reached the condition where you have no negative energy and cannot perform negative acts.
फिर आप इस गोल से घूमते 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 यहाँ तक पहुँच जाते हैं. तो यहाँ पहुँचने के बाद में ये स्थिति प्राप्त होती है कि जो बुरे कर्म है वो आपके हाथ से होते नहीं, जो अच्छे कर्म करते हो वो आप सामूहिकता को अर्पित कर देते हो, यानी अपने साथ बांधते नहीं हो.
Now you progress to this stage where you cannot do any negative acts and all the good acts that you do, you surrender to the collectivity so you don't think that you have done them.
इस स्थिति को कर्म मुक्त अवस्था कहते हैं.
This state is called a karma free state.
यानी आपके पास में कोई अच्छा भी कर्म बाकी नहीं है, कोई बुरा भी कर्म बाकी नहीं.
So you have no good karma and you have no bad karma.
बुरा कर्म इसलिए बाकी नहीं है क्योंकि आपने भोग लिया.
No bad karma because you've already borne it.
और बुरा कर्म अब हो नहीं रहा है क्योंकि आपके हाथ से बुरा कार्य हो ही नहीं रहा है.
And you're not doing any more bad karma because you cannot do it without the energy.
दूसरा जो कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं वो भी आप परमात्मा को समर्पित कर रहे हैं, वो भी अपने साथ अपने अकाउंट में डाल नहीं रहे.
And all of the good karma that you are surrendering to God so that it's not being added to your account.
तो आपके अकाउंट में आपके खाते में कोई भी कर्म नहीं है, ना अच्छा कर्म है ना बुरा कर्म है.
So your account has no karma at all, not good and not bad.
तो अगला जन्म लेने के लिए आपके पास में कोई कर्म ही नहीं है.
So there is no karma which will cause you to have another life.
वास्तव में कर्म के कारण ही हम अगला जन्म लेते हैं.
In reality, we take birth again because of karma.
तो कर्म मुक्त अवस्था वो मोक्ष की स्थिति है जिसके अंदर आप जीते हैं लेकिन आपके पास में कोई भी अकाउंट में कर्म नहीं रहता.
So a karma-free state is that state of salvation where you are alive but you are not collecting any karma and there's no need for another birth.
उसके बाद में आपका जो जीवन रहता है ना वो केवल दूसरों को हेल्प करने के लिए, दूसरों को मदद करने के लिए, दूसरों को सेवा करने के लिए रह जाता है.
Then your life is only spent in helping other people and benefiting other people.
क्योंकि आपको पाने के लिए आपके जीवन में कुछ भी बाकी नहीं रहता.
बिकॉज देयर इज नथिंग लेफ्ट फॉर यू टू अक्वायर इन लाइफ.
तो ये स्थिति आप सबको मिले, ये मेरी शुद्ध इच्छा है.
आई हैव द प्योर विश दैट ऑल ऑफ यू अक्वायर दिस स्टेट.
ताकि दूसरे जन्म का जरा जगह ही नहीं.
So that there is no need for another life for you.
इसलिए अच्छे भी कर्म करो ना तो अपने साथ बांधो मत, परमात्मा को समर्पित कर दो.
So even if you do good karma, don't tie them to yourself, surrender them to God.
Next question.
Is it important to clean the third eye to reach the crown chakra?
क्या तीसरी आंख को साफ करना महत्वपूर्ण है ऊपर सहस्त्रार तक पहुंचने के लिए?
देखिए, मैं जब मुंबई में नया नया आया ना तो मेरे को कोई कुत्ता भी पहचानता नहीं था.
When I came to Mumbai for the first time, no one knew, recognized me there, no one knew me.
लेकिन एक प्राणी हीलिंग की टीचर थी निमिषा बेन.
But there was a teacher of pranic healing called Nimisha Ben.
उसके टीचर, उसके क्लासेस चलते थे.
She used to conduct classes.
उसके बाद में उसका लोग रिस्पेक्ट करते थे, उसका लोग आदर करते थे.
She was well respected.
और वो जब कार्यक्रम के अंदर आई ना तो जैसे भोरा घूमता है ना वैसे गोल 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 घूमने लग गए.
When she came to the program, she started spinning like a top.
उसके बाद में मैं दूर से देख रहा था.
I was watching her from afar.
और मैं पता लग गया था कि इसने प्रैक्टिस आज्ञा चक्र तक की है, इसलिए इसकी कुंडली ऊपर नहीं जा रही.
I recognized that she had practiced and developed herself until the forehead chakra. And the energy was not rising higher. I placed my hand on her head and the energy started flowing.
So, jitne dhyan ke karyakram hai, jitne meditations ke method chalte hain, ye sab method hai.
All of the different techniques that we see around us, these are all different techniques.
Aur sab method agya chakra tak pahunchate hain.
And all of these techniques bring us and develop us until the forehead chakra.
मैंने अभी दांडी के अंदर जैन मुनियों का शिविर लिया.
आई हेल्ड अ वर्कशॉप फॉर जैन मंक्स इन दांडी.
तो जैन मुनियों ने मुझे कहा स्वामी जी, आठ दिन के बाद में हमको जो मिला है हम बाहर जाके बता नहीं सकते.
दीज मंक्स सेड दैट व्हाट वी हैव रिसीव्ड इन एट डेज वी कैनॉट गो आउटसाइड एंड टेल अदर पीपल.
क्योंकि ध्यान की जितनी पद्धति है उस पद्धतियों से तो आपने ध्यान कराया ही नहीं.
बिकॉज यू हैव नॉट टॉट अस मेडिटेशन थ्रू एनी ऑफ द नोन टेक्निक्स ऑफ मेडिटेशन.
देखो ध्यान की तीन पद्धतियां हैं. पहली पद्धति है त्राटक. त्राटक यानी ज्योति के ऊपर एकाग्रता करना.
देर आर थ्री मेथड्स ऑफ मेडिटेशन. द फर्स्ट वन इज त्राटक विच इज फोकसिंग ऑन फायर.
आपने इस पद्धति से ध्यान कराया नहीं.
यू डिडंट टीच अस मेडिटेशन विद दिस टेक्निक.
दूसरा है सांस के ऊपर चित्त रखना. सांस ले रहे हैं सांस छोड़ रहे हैं उसके ऊपर भी आपने ध्यान कराया नहीं.
The other method is by focusing on breathing, how you breathe in, breathe out. You didn't use this technique either.
तीसरी पद्धति प्राणायाम. प्राणायाम वस्ती का प्राणायाम करके मन को एकाग्र करना. उस पद्धति से भी आपने ध्यान कराया नहीं.
The third is pranayam. You did not use this technique either.
तो कोई भी तो पद्धति से ध्यान नहीं कराया.
So you didn't teach us meditation through any of the known techniques.
तो हम बाहर जाके लोगों को क्या बताएं कि हमने कौन से पद्धति से ध्यान सीखा.
So what do we tell people when we go outside? What technique have we learned?
मैंने उनको समझाया पहली बात तो ये ध्यान की पद्धति नहीं है.
The first thing I explained to them is that this is not a technique of meditation.
देखिए पद्धति के अंदर कोई सिखाने वाला रहता है कोई सीखने वाला रहता है.
In any technique there is a teacher and a student.
कोई किसी को सिखा सकता है कोई सीख सकता है.
Someone can learn and someone can teach.
ये शुद्ध संस्कार है. एक पवित्र आत्मा ने एक पवित्र आत्मा पे किया गया संस्कार.
दीज आर प्योर वैल्यूज. दीज आर वैल्यूज दैट आर पास्ड फ्रॉम वन सोल टू अनदर.
इसलिए आप तीसरी आंख की जो बात कर रहे हैं ना तीसरी आंख का संबंध आज्ञा चक्र के साथ है.
द थर्ड आई दैट यू आर टॉकिंग अबाउट दैट इज रिलेटेड टू द फोरहेड चक्र.
मेरा कहना है कि आप समग्र योग को सीखो ना. समग्र योग है सहस्त्रार चक्र तक. आप यहाँ का ध्यान मत करो. यहाँ का ध्यान करोगे तो यहीं अटक जाओगे.
So learn the complete technique of meditation. Focus on the Sahasrara chakra. If you focus on your forehead chakra, then you'll get stuck there.
देखिए अब आप अगर आज्ञा चक्र तक डेवलप हो गए और आज्ञा चक्र तक आपकी प्रगति हो गई तो आपके लिए अच्छा भी है बुरा भी है.
If you focus on the forehead chakra and you develop yourself up to that chakra, then it's good and bad for you.
अच्छा ये कि आप कम से कम आज्ञा चक्र तक तो डेवलप हो गए.
Good in the way that at least until the forehead chakra you are developed.
और बुरा ये कि आप पूर्ण तक पहुंचे नहीं.
And bad because you haven't completed the entire chakra.
देखिए आज्ञा चक्र तक पहुंचोगे ना तो आपने जिसको भगवान माना हुआ है जिसको परमात्मा माना हुआ है उसके दर्शन होंगे.
If you reach the forehead chakra, then whoever you consider God, you will see them.
लेकिन आपने जिसको माना हुआ है उसी के दर्शन होंगे दूसरे के नहीं.
but only that person that you have considered God, no one else.
लेकिन ये घटना ठीक वैसी है जैसे फ्रिज के अंदर अगर आपने केचप रखा है तो फ्रिज खोलोगे तो केचप दिखेगा.
This is like if you have put a bottle of ketchup in the fridge and you open the fridge, then that's what you see inside.
ठीक इसी प्रकार से आपने जिसको भगवान माना हुआ है उसके दर्शन आपको हो जाएंगे.
In the same way, whoever you consider God, you will have a vision of this person.
और दर्शन हो जाने बाद में आपके अंदर अहंकार आएगा कि अरे मेरे को तो परमात्मा के दर्शन हो गए अब तो मैं पहुंच गई.
And then you might develop arrogance that you've had a vision of God.
फिर आपकी प्रगति नहीं होगी आपका प्रोग्रेस नहीं होगा वो एक धोखा है.
And then you get stuck there, you won't progress. This is.
आपको यहाँ पहुँचने का है आपका टारगेट ये होना चाहिए आज्ञा चक्र नहीं.
Your target should be the crown chakra. That's your target.
इसलिए आज्ञा चक्र की तरफ ध्यान ही मत दो आप ध्यान दो सहस्रार की तरफ.
So focus on the crown chakra. Do not focus on the forehead chakra.
और सहस्रार चक्र में पहुंचोगे ना तो कुछ भी रूप दिखेगा नहीं.
And once you reach the Sahasrara chakra, you will see no form.
क्योंकि परमात्मा का कोई रूप ही नहीं है.
Because God has no form.
जितने भी रूप हैं हमने बनाए हुए हैं.
All the forms are made by us.
और हमारे मान्यता के कारण वो भगवान है.
And they are God because of our belief.
देखो मैं एक और उदाहरण लेता हूँ. समझ लो यहाँ एक मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ है.
I'll give you one more example. Assume that there's a heap of soil here.
हाँ, ये मिट्टी के ढेर से इन्होंने गौतम बुद्ध की प्रतिमा बना ली.
With this mud, this person made a statue of Gautam Buddha.
इन्होंने जीसस क्राइस्ट की प्रतिमा बना ली.
This person made one of Jesus
इन्होंने
Christ.
राम की प्रतिमा बना ली.
This one made one of Ram.
इन्होंने कृष्ण की प्रतिमा बना ली.
Someone else of Krishna.
और उसके बाद में सारी मूर्तियां मिट्टी में डाल दी तो मिट्टी हो गई.
And then they combined them again and they've all turned into soil again.
बिल्कुल ठीक ऐसा ही. परमात्मा का कोई रूप नहीं है. रूप का निर्माण हम हमारे भाव से करते हैं हमारे चित्त से करते हैं. राम है भगवान राम है भगवान तो हमको राम है भगवान मानने लग जाते.
In the same way, God has no form. We create the form for ourselves. If you say Ram is God, then Ram is God.
भगवान का कोई रूप ही नहीं है.
There is no form of God.
अगर ऐसा रूप होता तो बताओ ना कौन सा ऐसा रूप है जिसको विश्व के सब मनुष्य मानते हैं. है क्या कोई रूप? कोई भी नहीं.
Is there a form that every single person on the earth can believe in? There isn't.
जब यहाँ पहुंचोगे ना तब आपको कोई रूप नजर नहीं आएगा. आपको घंटा ना सुनाई आएगा चंदन की खुशबू आएगी गुलाब की खुशबू आएगी अनुभूतियां होंगी दिखेगा कुछ नहीं.
When you reach the Sahasrara chakra, you will have other experiences. You will smell sandalwood, you will hear bells, but you won't see anything.
दूसरा यहाँ तक जो भी लोग पहुंचे उन्होंने एक ही बात कही है परमात्मा एक है परमात्मा एक है. अब बताओ ना कौन सा परमात्मा ऐसा एक है कौन सा रूप ऐसा एक है जिसको सारा विश्व मानता हो. ऐसा कोई भी रूप नहीं है.
Whoever has reached the crown chakra has always said, there is only one God, there is only one God. Is there any one form that everyone on the planet can believe in? No, there isn't. So the God can have no form.
तो जो परमात्मा है ना वो एक चेतना के रूप में है वो एक चैतन्य के रूप में है वो कोई रूप के अंदर नहीं.
So God is an energy, it is not any specific form.
इसलिए उसको आज्ञा चक्र को क्लियर करने का जरूरत नहीं है आप सहस्रार चक्र पे ध्यान दो.
So there is no need to clear the forehead chakra, just focus on the crown chakra.
अब जैसे प्राणी किलिंग वाले ना वो क्या करते हैं ये समझ लो किसी झाड़ का पत्ता देखा कंटिन्यू तो झाड़ के पत्ते को देखते जाएंगे देखते जाएंगे देखते जाएंगे तो उसके आसपास उसको प्राण शक्ति दिखना चालू हो जाएगी. यानी आज्ञा चक्र का खूब ज्यादा उपयोग करते हैं इसीलिए वो लोग जाके आज्ञा चक्र पर अटक जाते हैं.
Pranic healers follow a method where they observe in extreme detail. For example, they look at a leaf and observe the leaf until they start seeing the pranic energy around the leaf. This develops their Agya chakra, but they get stuck there, the forehead chakra.
So Agya chakra ka jnan adhura jnan hai. Sahasrara chakra tak pahuncho, Vishnu mandir.
Knowledge of the forehead chakra is incomplete knowledge. Reach all the way to the crown chakra.
Samjha? Next.
Swamiji, is it important when I concentrate on the crown chakra that I connect to the guru energies, or could I also just connect to the divine energy, Brahma Shakti?
जब मैं सहस्त्रार पे ध्यान करूं तो क्या ये महत्वपूर्ण है कि मैं गुरु शक्तियों के साथ संपर्क करूं या क्या मैं सिर्फ दिव्य शक्तियों के साथ जुड़ सकती हूँ. तो गुरु शक्तियों के साथ जुड़ना महत्वपूर्ण है या मतलब दिव्य शक्तियाँ.
अरे दिव्य शक्ति बोलो गुरु शक्ति बोलो सब शक्ति एक ही.
कॉल इट डिवाइन एनर्जी कॉल इट गुरु एनर्जी इट्स ऑल द सेम थिंग.
मैं आपको इतना तो समझा रहा हूँ, मिट्टी के ढेर से किसी ने इसकी मूर्ति बनाई, इसने किसी किसी ने दिव्य शक्ति बना दी, किसी ने सिद्ध शक्ति बना दी, किसी ने ब्रह्म शक्ति बना दी, अब तुम कुछ भी नाम दो उसको, उसमें क्या.
I just explained from the pile of earth, people have made different statues. So someone made Guru Shakti, someone made divine energy, someone made Brahma energy. So it's all the same thing.
Sab ek hi.
There's a lady in white, yes.
Tumko jo naam dena ho do.
Call it whatever you want.
Jai Baba Swami. I have this experience when I'm meditating that I'm turning around all the time and that my head is falling into the neck.
मुझे ये अनुभूति होती है कि जब मैं ध्यान करती हूँ तो घूम रही हूँ और मेरा सर ऐसे गिर जाता है.
आपका ना विशुद्धि चक्र पे दिक्कत है आपके, आप गिल्टी फीलिंग करती है.
There is a problem in your throat chakra. You have guilt feelings.
Actually, 10 औरतों के बीच में जब आप बैठती होगी नहीं, आपको लगता है आपके अंदर कुछ कमी है. कुछ कमी है क्या? मेरे को तो नहीं दिख रहा है.
When you sit among 10 other women, you feel like there's something less in you. Is there something less in you? I don't see it.
Guilty feeling क्यों करती है?
Why do you feel guilt?
I don't know.
पता नहीं.
एक्चुअली क्या रहता है मालूम है, कई बार माँ बाप बोलते तू गधी है, तू गधी है, तू गधी है, अपन भी सोचने लगे थे मैं गधी हूँ, मैं गधी हूँ, मैं गधी.
Sometimes our parents say you are stupid and then you start believing that maybe you are.
Yes.
ऐसा करा है क्या माँ बाप ने?
Have your parents done something like that with
yes.
you?
हाँ. तो उसका इफेक्ट अभी तक बाकी.
The effect is still there.
दूसरा उसको छोड़ दो ना, वो उनकी सोच है, अपने आप को अपन क्या बोलते हैं ना, गधे नहीं समझने का.
Leave it. That is their thought. That's their opinion. You shouldn't think that of yourself.
Actually, क्या रहता है मन में? अगर हमारा विशुद्धि, हम अगर आत्मग्लानी करते रहे, हम हमारे नजर में गिरे रहे, तो हम कभी प्रगति नहीं कर सकते, कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकते.
If we look down on ourselves, then we can never progress spiritually.
आप भी आकाश की तरफ देखा करो, तो आकाश की तरफ देखोगे ना, धीरे-धीरे विशुद्धि खुल जाए.
You can also look at the sky. As you continue to practice that, your throat chakra will open up.
और दूसरा, आत्मग्लानि का कभी भी विचार मत करना.
And never think of guilt.
कि मेरे अंदर कुछ कमी है, मेरे कुछ नहीं, एकदम मैं अच्छी हूँ.
Never think that there's anything less in you. Think that you're perfect.
दूसरा पॉजिटिव सोचो ना, मैं स्वामी जी के कार्यक्रम में गई, आज मेरे को अवसर मिला स्वामी जी से बात करने का, मैंने सीधे उनसे बातचीत की, ये सब अच्छी अच्छी बातें सोचो ना.
Think of the positive things, like you've had the opportunity to come here in front of Swamiji, that you talked to him directly, you asked him a question. Think of those things.
अच्छी है, मैं कितनी श्रेष्ठ हूँ कि मेरे को बोलने का अवसर मिला, मेरे को वहाँ तक पहुँचने का अवसर मिला.
Think that my state is so good that I could reach here, that I could talk to him.
मैं कितनी पुण्यवान हूँ कि उस कार्यक्रम में मैं शामिल हो सकी.
I must have so many good deeds that I was allowed to come here and.
सच में बता रहा हूँ, आप लोग पुण्यवान हैं, नहीं तो इंडिया के अंदर लाइव थोड़ी कार्यक्रम हो रहे हैं, लोग वीडियो से बेचारे देखते रहते.
I'm telling the truth. You have earned this. In India, there aren't any live programs anymore. They are done through videos. You have this opportunity.
Military के अंदर, police के अंदर video शिविर हो रहे हैं. वो video शिविर से ध्यान कर रहे हैं.
The police, the military, they're meditating through video shivirs with Swamiji.
दूसरा एक ध्यान रखो, किसी के कारण आप यहाँ तक नहीं पहुँचे. आपका स्थिति हो गया इसलिए आप यहाँ तक पहुँचे.
You have not reached here because of anyone. You have reached here because your state is good enough to get here.
क्योंकि मेरा aura, मेरा आवामंडल जितना strong होते जाएगा ना, उतना ही आपको मेरे पास आना कठिन होते हैं.
Because as my aura gets stronger and stronger, it'll be harder and harder for people to come close to me.
तो आप मेरे तक पहुँची हो, मेरे से बात कर रही हो, मेरे सामने खड़ी हो, ये सब पॉजिटिव बातें सोचो ना.
So the fact that you have reached here, that you are standing in front of him, that you are talking to him, think of these positive things.
चाहिए तो रात को डायरी में लिख के रखो.
If you want, write these things down in a diary at night.
जब भी कभी guilty feeling का विचार आए ना, उसको पढ़ लिया करो.
And whenever you feel guilty, read that entry.
बस बैठ जाओ.
Sit down.
Hi.
जिसके पास माइक हो राजा, हाथ ऊपर करके कुछ नहीं होगा.
Whoever has the mic is king. It doesn't matter if you raise your hand. So my whole life I struggle with this question, wondering what we're really doing here and what life's about. Like, what are we really doing here on this planet? But mostly for myself, I don't never understand what the purpose of my life should be and what direction to choose in life. And the more I meditate, the stronger this issue gets for me.
मैं जिंदगी भर सोच रही थी कि हम यहाँ कर क्या रहे हैं, इस दुनिया में कर क्या रहे हैं हम, और मेरे खुद के इस उनके खुद के जिंदगी के बारे में वो ज्यादा सोचती है कि मेरा क्या, मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है जिंदगी का, कौन सी दिशा में जाना चाहिए.
इनके राइट हैंड में वाइब्रेशंस क्यों नहीं आए, इस दिशा में जाना चाहिए.
राइट हैंड में वाइब्रेशंस क्यों नहीं आए, इस दिशा में
क्यों नहीं आए, इस दिशा में जाना चाहिए.
You should go in the direction of finding out why you did not feel vibrations in your right hand.
I nor am I left hand.
Unko dusre haath mein bhi nahi vibrations aaye, dono haath mein sirf garmi thi.
Liver garam hai na iske karan.
It's because your liver is hot.
Khub zyada sochte ho, khub zyada vichar karte ho na iske karan.
You have a lot of thoughts, you think a lot.
To vichar karna kam karo.
Reduce your thoughts.
ये दुनिया आपने को थोड़ी चलाने की है, बहुत सारे लोग हैं चलाने वाले.
You don't have to run the world. There are a lot of people to do that.
विचार कम करो. और दूसरा ये वो उनको बताया ना, वैसे चंद्रमा के प्रकाश के अंदर अपने लीवर पे हाथ रख के लीवर के लिए चंद्रमा का ठंडक शक्ति मांगो.
Use the same solution that I offered the other person. Put in on a full moon night, go out and meditate under moonlight. Place your hands like Swamiji showed. And ask the moon to give you cool energy, cool your liver.
मैं यहाँ आया था तो यहाँ कुछ यूनिवर्सिटी के जर्मन डॉक्टर मेरे को मिलने के लिए आए. स्वामी जी हम विश्व शांति करना चाहते हैं, विश्व कल्याण करना चाहते हैं.
When I was here in Germany earlier, some university professors came to me and said, "We want world peace. We want to bring world peace."
करता है ना, तो फिर पहले मैं उसके लीवर को देखता हूँ. मैंने बोला तुमको शांति है क्या, क्योंकि उनका लीवर ही गर्म था.
Whenever someone talks about such huge lofty ideas, I check their liver. Their liver was hot. So I ask them, are you peaceful? Is there peace in you?
To bole nahi humko shanti nahi lekin hum vishwa shanti chahte hain.
They said no, we are not at peace but we would like world peace.
To maine unko kaha vishwa shanti ki shuruaat atma shanti shuru karo, pehle apne aap ko shanti prapt karo.
I said world peace starts with inner peace. Bring peace to yourself.
Vishwa shanti ka artha aaj aapko samjhata hu.
Let me explain what world peace means today.
विश्व शांति का अर्थ ये इतना बड़ा विश्व नहीं है.
World peace does not mean this entire large world.
विश्व शांति का अर्थ है आपका विश्व, निजी विश्व.
It means your world, your personal world.
निजी विश्व से मेरा आशय आपका 20 फीट का हो रहा, आपका 25 फीट का हो रहा, ये आपका विश्व है.
By personal world, I mean your aura of 20 feet, 15 feet.
उस विश्व के अंदर आप जरूर शांति ला सकते हो.
In that world, you can definitely bring peace.
वो विश्व जरूर कल्याणकारक हो सकता है.
You can definitely make that world beneficial.
वो विश्व सुरक्षित हो सकता है.
That world can be safe.
और ऐसा विश्व लेके आप दुनिया के कोई भी कोने में चले जाओ, आपका विश्व वैसा ही होगा जो अपने आसपास बना हुआ है.
And with this world, you can go to any corner of the actual world, and your world will be exactly the same.
पिछली बार जब मैं जर्मनी आया था ना, तो वहाँ अबू धाबी आया था. उसके बाद में अरबस्तान में मेरे कार्यक्रम हुए.
The last time I came to Germany, I came via Abu Dhabi, and since then I have had workshops in the Middle East.
तो जब अरबस्तान में कार्यक्रम चल रहे थे, तो अहमदाबाद से एक साधक ने पूछा, स्वामी जी अरबों को जाके ध्यान सिखाना मतलब शेर के मुंह में हाथ डाल के दांत गिनने सरीका है.
And one meditator from Ahmedabad said, going to the Middle East and teaching people meditation is like putting your hand into the mouth of a lion.
उसका फोटो उसको भेज दिया. मैंने कहा देख मेरे आसपास वही स्थिति है जैसे भारत में रहती, यहाँ भी लोग ध्यान सीख रहे.
I sent him a picture of the workshop with me meditating along with several other people and I said look with in my world the environment is the same whether I'm in India or in the Middle East.
तो कहने का अर्थ ये छोटा सा विश्व, निजी विश्व आप जरूर बना सकते हो.
So what I mean is this personal world you can definitely create.
और वो विश्व के बारे में सोचना छोड़ दो, अपने विश्व के बारे में सोचना चालू करो.
So stop thinking about the other world, start thinking about your personal world.
और वो विश्व लेके आप दुनिया के कोई भी कोने में चले आओ, आपका विश्व वही होगा.
And when you take your personal world to any part of the world, it'll be the same.
तो फर्क नहीं पड़ता आप अच्छे देश में जा रहे हो या बुरे देश में जा रहे हो.
Then it doesn't matter whether you're going to a good country or a bad country.
अच्छे जगह जा रहे हो या बुरी जगह जा रहे हो.
Whether it's a good place or a bad place.
तो विश्व शांति से मेरा आशय आत्मशांति से, अपने आप को आत्मशांति प्राप्त करो, अपने आसपास एक आभा मंडल बनाओ, अपने आसपास एक ओरा बनाओ, अपना ओरा का एक अलग विश्व बनाओ और वो विश्व लेके दुनिया में जाओ.
So when I say world peace, I mean inner peace, the peace within your own world, your own aura, which you can take to any part of the world.
ये विश्व खराब रख करके आप सोचोगे विश्व में शांति होगी, तो कभी विश्व में शांति नहीं हो सकती.
If this personal world is not peaceful and you think that you can bring about world peace, that'll never happen.
अरे इतने बड़े बड़े देव पुरुष आकर के वो शांति नहीं कर पाए, अपन कर पाएंगे क्या?
several divine holy people have tried to achieve this and they haven't, and you think you can?
आप अपने विश्व का सोचो, ये बाकी के विश्व का छोड़ना.
Think about your own world, forget about the larger world.
तो आप सोचो ना, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति अगर अपने आसपास विश्व शांति का बनाए तो हो सकता है विश्व में शांति आए.
Because if every individual builds this own private world, peace, then there can be peace in the entire world.
लेकिन आपको खुद को शांति प्राप्त नहीं हो रहा, आप विश्व शांति की बातें करोगे तो क्या हो?
But if you don't have peace within yourself and you talk about world peace, how will that work?
तो इसलिए दुनिया के बारे में सोचना छोड़ दो, अपने बारे में सोचो, अपना विश्व बना.
So stop thinking about the world, think about yourself, build your world around you.
Next.
समय समाप्त हो गया है.
उनको समझा कि नहीं?
Have you understood? He wants to know.
And I believe that world peace, inner peace is the same thing. I understand
that. थोड़ी संगत चेंज करो.
He's saying change the company that you keep.
आपके जो पांच प्रिय व्यक्ति होंगे ना, वो पांचों इसी टाइप के विचारों के होंगे.
Five people who are closest to you, they will all have they will all be people who have similar thoughts as yours.
हम जिनके साथ में रहते हैं ना, हमारे भी विचार उनके जैसे हो जाते हैं.
When we spend our time in the company of a specific kind of people, then we are affected by their thoughts.
अच्छे लोगों के साथ में रहो ना, ध्यान करने वाले के साथ रहो, मेडिटेशन करने वाले के साथ रहो, ऑटोमेटिकली ऐसे विचार नहीं आएंगे.
So spend your time with with good people who meditate, and then you won't have such thoughts. Thank you. समय समाप्त हो गया है.
One small thing to be added. Just shortly before Swamiji entered the hall, Swamiji said that because there are many German participants here, also those who joined the first retreat and couldn't get Swamiji's physical proximity, so he asked that we jot down the main points that Swamiji said during this discourse into German, and then have a session with those Germans who didn't understand English so that they know what the discourse was about. Therefore, to our organ team, maybe you can check what time would be good to arrange a time during this retreat where for the main points of Swamiji's discourses are translated into German. Für die deutschen Teilnehmer, die kein Englisch verstehen, hat Swamiji gebeten, dass Mitschriften gemacht werden, eine kurze Zusammenfassung von den Diskursen, und das Orga-Team wird sich darum kümmern, dass es noch eine Session gibt, wo das erläutert wird. And furthermore, there will be another question-answer session on Sunday afternoon. And one thing which was forgotten in the first, in the introduction, those of you who are new, just that you know that, what we recommend, or Swamiji recommends, to look beyond Swamiji's physical body. The Guru is not a body. If we want to absorb the energy that Swamiji transfers, the best thing is that we look beyond the body and connect on the soul level, because the physical body, sometimes we get attached naturally, but this blocks actually our receiving. And therefore, in Swamiji's discourses, actually the words are not the most important things, it's the energy which gets transferred, especially between the words. Okay, and then also one kind request. We had said it to most of the participants also by email. We have a kind request also connecting to the explanation that the Guru is not the physical body, that we don't do the physical namaskar, the physical bowing down in front of Swamiji. It has energetic reasons. We had sent an explanation about this. So for those who didn't read it, the Orga team can explain it to you later on. So kind request not to do namaskar, physical bowing down in Swamiji's proximity. And lastly, we had so many helpers who really helped in this retreat. We just request the Orga team members just to stand up, because in case you have any questions during the retreat, you can approach them. So quickly, if the Orga team members could just raise their hand or stand up. So if you have any questions during the retreat, you can ask them. Okay. And
after Swamiji and Guru Ma leave the room, we kindly request that you just wait a little bit and then leave the room.
Let us end with the Shanti part. Om Dhyo Shanti Chakram
Shanti Vritti Shanti Rapa Shanti Oshadaya Shanti Vanaspataya Shanti Vishri Shanti, Sarvatam Shanti, Shanti Deva Shanti, Sama Shanti Rehi, Om Shanti, 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 Sarvesha Shanti Bhavatu.
एक महत्वपूर्ण बात यह बताने की थी, मैं हिमालय से शुद्ध और शुद्ध ध्यान लेकर के समाज में आया था.
I want to tell you an important thing. I only and only brought meditation when I came from the Himalayas.
बाद में भारत में आने के बाद वो भारत के समाज के लोगों ने फिर गुरु आह्वान और शांति पाठ सब जोड़ दिया.
When I came to India, the people of India joined the Guru Abhan, the Shanti part, and all of that to meditation.
ये लेके मैं आया नहीं था.
But I didn't bring any of this from the Himalayas.
अच्छा, उनको जोड़ने से मना इसलिए नहीं किया, वो जोड़ करके उन्होंने उनकी भाव बढ़ाया ना, उन्होंने उनकी सामूहिकता बढ़ा ली.
I didn't ask them not to join this because they use these mediums to increase their collectivity and their feeling.
तो आज उन्होंने अपने भाव को वृद्धिगत करने के लिए ये सब बातें जोड़ी है और ये करके उन्होंने उनकी सामूहिकता लाखों में कर ली.
So they use these methods to increase their collectivity and their feeling, and now they are a huge collectivity of hundreds of thousands of people.
इसलिए मैंने उनको करने से रोका भी नहीं.
That's why I did not stop them from doing this. I let them.
लेकिन यहाँ पे एक बताना चाहता हूँ कि एक शंखेश्वर करके जैन तीर्थ क्षेत्र में मैं गया था.
But I'd like to tell you, I'd once gone to a Jain temple in Shankheshwar.
तो उनके जो मठाधीश थे ना, उन्होंने कहा हमारे यहाँ पे भी जो पांच कर्म कांड होते हैं इसके साथ पांचों दफे ध्यान ही होता है.
He explained that at their place when they meditate there are five stages and all five stages are meditation.
लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, ध्यान छूट गया और सिर्फ कर्म कांड रह गए.
But gradually meditation went out of it and the five stages remained as rituals.
तो मेरे को डर है कहीं तुम गुरु आह्वान और शांति पाठ याद रखो और ध्यान छोड़ दो, ऐसा मत करना.
So I am worried that you will remember the Guru Avahan and the Shanti part and not do the meditation.
तो महत्वपूर्ण वो है, बाकी कुछ नहीं.
What is important is the meditation, nothing else.
नहीं, क्या होता है मालूम, ये कर्मकांड करना खूब आसान रहता है, ध्यान करना कठिन, तो इसलिए मनुष्य ध्यान छोड़ देता है और कर्मकांड पकड़ लेता है.
Rites and rituals are easy, meditation is hard. So meditation gets left behind and the rituals remain.
तो और हिमालय में कोई कर्मकांड नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, कोई कुछ नहीं है.
There are no rituals in the Himalayas. There are no temples. There are no statues. There's nothing.
सब लोग अंतर्मुखी है, किसी को दूसरे की आवश्यकता नहीं है ध्यान की.
Everyone looks inwards. They don't need anything on the outside for meditation.
बस इतना ध्यान रखो.
That's all. Keep that in mind.